ਜਿਸ ਕਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤਾ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਉਸਕੇ ਲਿਏ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੋ
ਜੀ
ਸਭ ਕੁਛ ਤੋ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਹਮ ਲੋਗ ਨਹੀਂ
ਸਮਝੇਗਾ ਤੋ ਮੁਝੇ ਤੋ ਲਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਜੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਇਸ ਆਇਤ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿਆ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੋ ਇਤਫਾਕ ਸੇ ਮਾਂ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਂ ਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਾਨ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਬਾਤ ਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਵਹੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਕਮਸ
ਕਮਸ ਟੁਗੇਦਰ ਕੈਸੇ ਆਤੀ ਕਭੀ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਸੋਚਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜੀ
जैसे हर तकलीफ के साथ ही अल्लाह ताला ने आसाने रखी उसके बाद भी रखी
उसके बाद भी रखी
क्योंकि इंसान की आजमाइश तो आनी है
जी तो इसको हम प्रैक्टिकल जिंदगी में जी हौसला दिया बिल्कुल इसको अगर हम अपनी जिंदगी में अपनी जात पर लेके सोचे कि ये माँ मेरी जिंदगी में जो कल जो परेशानी आई थी फर्ज करें अगर कल परसों या जब भी तो उसमें माँ कहाँ था ये हम लोगों को फिगर आउट करने की जरूरत है क्योंकि क्या होता है जब हमारे पर कोई भी परेशानी होती है ना तो हम उसे माँ नहीं तलाश कर रहे होते हैं हम उसको परेशान हो रहे होते हैं तो अगर हम अपनी हर परेशानी पे माँ को तलाश करना शुरू कर दें यानी कि इस परेशानी या इस पर्टिकुलर मोमेंट जो मुझे ये परेशानी है इसमें माँ कहाँ है खैर कहाँ है तो फिर इंसान का थिंकिंग पैटर्न बदल जाएगा
सब्र होना चाहिए
जी
सब्र होना
चाहिए
तवक्कुल होना चाहिए जी
मैं सोच रही थी कि अल्लाह ने हर चीज जोड़ा जोड़ा बनाई है तो इसी तरह
परेशानी और बहुत अच्छी
बात है माशाल्लाह
आप
देखिए कि आप लोगों का इनपुट जो होता है ना ये मुझे बहुत एनर्जी देता है क्योंकि दीवारों के साथ बातें करना तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता ना तो कीप इट आपके मैंने कल ग्रुप के अंदर जो चीज़ें देखी और जो आप लोग भेजते हैं माशाल्लाह इधर वॉल्स पे भी लगी हुई है तो ये सारी चीज़ें आपका डीप इन्वॉल्वमेंट बताती हैं इवन अगर आप अपने बच्चों से ही बनवाते होंगे लेकिन घर जाके सोचते हैं ना कीप इट इसलिए कि जब तक आप अपने आप को खुद वो कहते हैं ना फ्रोलेंगे नहीं अंदर से निकालेंगे नहीं अपनी चीज़ें बाहर मज़ीद जाने की जगह नहीं बनती ठीक है तो चलते हैं आज का भी टारगेट बहुत खूबसूरत है बहुत छोटी छोटी सूरतें हैं लेकिन बिलीव में दिल को उदास करने वाली सूरतें हैं तो सबसे पहले इंशाल्लाह सूरत अल क़ारिया तरतीब के अतबार से 101 सूरत है आयतें 11 हैं मक्की सूरत है दो पैराग्राफ है यानी आप देखिए कि अब इन सूरतों का हुस्न क्या है कि हैं तो बहुत मुख्तसर लेकिन अमूमी तौर पे हर सूरत में दो टॉपिक हैं पहला टॉपिक आयत 1-5 क़यामत के पहले मरहले की तस्वीर कशी है कि होगा क्या उस वक़्त बहुत शौक़ होता है हमें देखने का तसव्वुर की आँख से आने वाले वक्त को तो ऐसे ही लग रहा है कि ये हम अपनी तसव्वुर की आँख से तसव्वुर की आँख से सब कुछ देख रहे हैं फिर उसके बाद आयत नंबर 6 से लेकर एंड तक यानी 11 तक दूसरा पैराग्राफ है क़यामत का दूसरा मरहला जब आमाल नामे तोले जाएंगे गोया के पहला हिस्सा क़यामत के मतलब और दूसरा आमाल नामे से मतलब पूरी सूरत का मरकज़ी मज़मून क्या है रोज़े क़यामत आमाल की तराजू में नेकियों की कसरत दखूल जन्नत का सबब बनेगी और नेकियों की किल्लत जहन्नुम में दाखले का सबब बनेगी ज़माने नज़ूल इसका भी इब्तदाई दौर है सन 390 से पहले पहले के दौर में नाजिल हुई वन बाय वन दावत थी और छोटी सूरतें मुहकम जामे और ईमान बिल आखिरा को प्रवोक करने वाली इस सूरत का भी पिछली और अगली सूरत से रब्त ले लीजिए इससे पीछे हमने सूरत जिलजाल में आमाल के दिखाए जाने की बात की थी आज आप में से किसी ने इस पे शायद बात नहीं की या की है दिखाए जाने पे मैं तो कल सारा दिन इसको ही सोचती रही कि अल्लाह तेरा शुक्र है ली यू रऊ आमाला हूँ मैं अल्लाह दिखा के माफ़ कर देगा बुरे कामों को और अगर ये हो जाता कि उनको उनके बुरे आमाल की सज़ा मिलेगी तो फिर तो हमेशा सज़ा मिलनी ही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह दिखा के अल्लाह दूर से पीछे कर देगा तो वहाँ चूँकि अमाल के दिखाने की बात थी फिर इसी तरह पीछे सूरत आदियात में नशुक्री की बात थी इन्नल इंसान अली रब्बी ही लकनूद की बात थी और शुक्र से अच्छे अमाल फूटते हैं और बुखल से बुरे अमाल निकलते हैं दुनिया की मोहब्बत असल में बुखल ही है तो लिहाजा यहाँ सूरत अल क़ारिया में अच्छे कामों की रग़बत ताकि तुम्हारा तराजू भारी हो जाए और बुरे कामों से रुकना ताकि तुम उस दिन बच जाओ इससे अगली सूरत जो हम पढ़ेंगे वो सूरत तकासुर होगी मादा परस्ती की दौड़ से अलग थलग रहकर आखरत की तैयारी का हुक्म है पीछे हमने सूरत आदियात में एक दौड़ पढ़ी थी वला आदियाती दबहा में कि तुम सब उन घोड़ों पर रश करो जो अल्लाह के रास्ते में दौड़ते हैं کل یہ بات نہیں کی تھی، شام کے درس میں یاد آئی تو میں نے پتہ نہیں ذکر کیا کہ نہ کیا کہ ان گھوڑوں کی اتنی شان ہے جن کے قدموں کی چاپوں اور ان کے ایک ایک ایکشن کو اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا، تو اس گھوڑے پہ بیٹھنے والے کی کیا شان ہوگی جو اس پہ بیٹھا ہے. تو وہاں وہ بھاگ دوڑ تھی، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے دنیا کی دوڑ سے نکال کر آگے لے کر چلتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ تم اس تکاثر میں پڑھنا ہی چاہتے ہو نا، تو نیکیوں کے تکاثر میں پڑھو، اس کی فکر کرو. ففروا الی اللہ. پھر اسی طرح سورۃ عادیات میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ تھا، تو اس سورۃ تکاثر میں آگے پڑھیں گے الحاکم التکاثر. ساری بات کو جمع کر لیجئے، روٹ کاز حب دنیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا کیا ہے؟ دنیا کی محبت راس کل خطیہ، ہر خطا کی جڑ ہے یا اس کی ماں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ سورت کا نام القاریہ، سورت کے بالکل آغاز سے ہی ہے، پہلی سورت پہلا نام ہے. اور اس سورت کو پڑھتے وقت واقعی ایک کھڑکھڑاہٹ اور ایک شور کا انداز محسوس ہوتا ہے کہ جس کو انسان واقعی محسوس کرے تو قیامت کے منظر کو کھلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سورت القاریہ مکی صورت چونکہ ہے، ابتدائی دور کی صورت ہے، تو قیامت اور آخرت کا منظر یہی اس پوری صورت میں، اور گھبراہٹ اور لوگوں کے بھاگنے کا. اور خاص طور پہ صورت میں آپ دیکھیں گے پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہے. اتنی مضبوط مخلوق کا یہ حال ہوگا تو انسان تو بہت ہی کمزور ہے. جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی، فیصلے سننے کے لیے ہم میدان محشر میں ہوں گے، تو اس دن کیا ہوگا؟ آئیے پڑھتے ہیں ان آیتوں کی روشنی میں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ تو ملقاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ اگر آپ اس کو دوسرے اینگل میں دیکھ لیں، عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ وما ادراک ملقاریہ، اور تمہیں کیا معلوم یا تمہیں کون بتائے کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا سمجھے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ آپ دیکھیں کتنا زبردست سٹارٹ ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا ہوشیار، ٹک ٹک ٹک، جیسے ایسے کوئی کرے. اس کو عربی میں قرع کہتے ہیں، قرع، ان ایک چیز کو کسی دوسری چیز پر زور سے دے مارنا، جیسے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹایا جاتا ہے. اسی لیے پھر قاریہ کا لفظ حادثے اور عظیم مصیبت کے لیے بولا جاتا ہے. جب کوئی قوم کسی حادثے یا کسی عظیم آفت کا شکار ہوتی تھی تو عرب لوگ کہا کرتے تھے قرأتہم القاریہ، یعنی پڑ گئی ان پر آفت. مراد کیا ہے کہ جب وہ قیامت آئے گی تو پوری کائنات کو کھٹکھٹا ڈالے گی، دنیا کی ہر چیز کو تہو بالا کر دے گی، سارا سولر سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا، تمام اجرام فلکی آپس میں ٹکرانے لگیں گے، جس سے خوفناک دھماکے ہوں گے، دل ہلا دینے والی آوازیں پیدا ہوں گی. اور وما ادراک ملقاریہ، اس سے بھی تم کوئی نہیں سمجھ پاؤ گے، وہ تو جب آئے گی، جب وہ وقت آئے گا، جب وہ حادثہ ہوگا، پھر لگے گا تم کو پتہ کہ وہ کیا ہوگا. اللہ اکبر، ٹھوکنے والی. کبھی گھر میں کام ہوا ہے آپ کے؟ گھر میں رہتے ہیں اور کوئی رینوویشن ہو. ہمارے اسکول میں آج کل کام ہو رہا ہے ناروے میں، کئی دن صرف اس لیے کلاس ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ وہ ٹھوک رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں باہر کے ملکوں میں بلا وجہ شور نہیں کرتے، وہ ایسے ایکسٹرا کیئرفل ہو کر کام کرتے ہیں، اس کے باوجود کھٹ کھٹ اور کبھی مشین چلتی کبھی کچھ. تو وہ آوازیں ذرا ذہن میں لائیے، یا کوئی بہت شور دھماکہ کبھی سوچا اس کو ذہن میں رکھیے، قیامت کا دن کیا ہوگا، اتنی بڑی مصیبت ہوگی. اور یہ لفظ پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں، آپ کو یاد ہے کس صورت میں؟ سورت رعد میں آئے 31، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِيَةٌ، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان پر تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی ہی رہتی ہے. یعنی دنیا میں کبھی ایک ہریکین آ جاتا ہے، کبھی ایک تھنڈر سٹورم آتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں. آپ خود دیکھیے، ہر ایک دو مہینے کے بعد دنیا کے کسی کونے میں کوئی نہ کوئی آفت تو آتی ہے. چلیے ایک جگہ آئی دوسری جگہ چلے جائیں گے، ریسکیو اسٹیشنس بن جاتے ہیں. لوزیانا میں جب कैटरीना या रीटा आया तो लोग ह्यूस्टन में निकल आए। आपके लोगों के लिए तो ये बात समझनी बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना, फ्लोरिडा में जब समुद्री तूफान आते हैं तो लोग जॉर्जिया में आ जाते हैं ना, उस दिन कहाँ जाएंगे? उस दिन तो पूरी दुनिया पे होगा, क़यामत के धमाकों और क़यामत की इन सारी चीज़ों में सबसे बड़ी बात है कि इट विल बी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो पूरी दुनिया पे होगा और ये क़यामत के नामों में से एक नाम है अलकारिया। जैसे अलहाका में क़यामत का नाम वही रखा गया था जो कि वहाँ आया था, तो क्या पता चला कि ये क़यामत का पहला मरहला, ये लिख लीजिए, अलकारिया क़यामत का पहला मरहला है और आगे जाकर अजाब और सवाब के आखिरी मरहले तक ये सूरत पहुंचेगी। अलम आखरत है पूरा। क़यामत का पहला मरहला अलकारिया तुम अलकारिया हादसा, सारी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम, लोग घबराहट की हालत में इस तरह भागे फिरेंगे जैसे रोशनी पर आने वाले परवाने हर तरफ से गिर गिर जा रहे हैं। और पहाड़ों का हाल क्या होगा? फरमाया यौम यकूनुन नासुकल फराशिल मफसूस, जिस दिन लोग बिखरे हुए पतंगों की मानित होंगे। पतंगा बहुत लाइट वेट होता है, वजन नहीं होता उसका, फूक मारो तोड़ेगा। यानी उस दिन लोग वर्थ लेस हो जाएंगे, बड़े बड़े नाम, मिनिस्टर, चीफ, अवार्ड होल्डर, ऑस्कर अवार्ड, मिलियनेरियन, बिलियनेरियन, टॉप टेन, सब का वज़न पतंगे की तरह होगा, वेटलेस होंगे। दुनिया में तो हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं ना, लेकिन दुनिया का वज़न कम नहीं करते, इसलिए हमारा कम नहीं होता। अगर चार दिन ज़रा ऐश तैश वाले खाने छोड़कर हम भी रूखी रोटी और जौ और पानी पे आ जाएं, हमारे सबके भी वज़न ठीक हो जाएं। असल बात है कि उस दिन लोग अपनी असल पे आएंगे। है तो ये फराश ऐसे, और फराश पतंगे को क्यों कहते हैं कि ये गिर गिर के ज़मीन पर गिरता है। आपने कभी बारिश के बाद बैकयार्ड में देखा हो तो ज़मीन पर ऐसे पतंगे बिखरे होते हैं। यानी इंसान जो उड़ना चाहता था, जो इस दुनिया में हाई राइजन पे था, उसके बड़ा न्यू उसके वराइजन से, वो ज़मीन पे गिरा होगा। मबसूस बसा या बसू से बासासा मफूल का वज़न है, यानी बिखरे हुए, कोई वैल्यू नहीं होगी। और उनको कोई उस वक़्त जाकर सल्यूट मारने वाला नहीं होगा, कोई उनको देखकर दरवाजे नहीं खोलेगा, और वो बिल्कुल पाँव में रुल रहे होंगे। ये तो था हजरत इंसान जो कमज़ोर हस्ती थी, लेकिन दुनिया की देखी जाने वाली चीज़ों में तसव्वुर की निगाह से अगर देखें तो सबसे मजबूत चीज़ पहाड़ होती है। उनका हाल क्या होगा? वतकूनुल जिबालुकल इहनिल मनफूश, और पहाड़ धुनी हुई ऊन की मानित हो जाएंगे। इहन का लफ्ज़ है ना, जो असल में का जो है ना मानित है, तमसील मिसाल हर्फ है, अल निकाल दीजिए पीछे इहन है, रंगदार ऊन को कहते हैं, वूल, कलर्ड वूल। और मनफूश नफशा से, आप पीछे हजरत दाऊद के किस्से में भी पढ़ चुके हैं, जो बकरियां फैल गई थी उसके लिए भी वहाँ इसी से मिलता हुआ लफ्ज़ था। नफशा धुनने को कहते हैं, जब रुई को धुना जाता है ना ऐसे उसके फाइबर होते हैं, फूक मारे ना तो उड़ जाती हैं। आपको याद होगा बचपन में हम लोग भी वो भूड ऐसे छोटी छोटी भेड़े पकड़ते थे, अंदर एक छोटा सा कॉटन का वो सीट होता था और उसके इर्द गिर्द बिल्कुल वेटलेस किस्म की चीज़ होती थी, वो है मनफूश। यानी ये पहाड़ अपनी जगह पर कायम नहीं रहेंगे, रेजा रेजा होकर रंगदार ऊन की तरह हवा में उड़ जाएंगे। इहन क्यों होंगे? इहन प्योर वूल को नहीं कहते, डाइड वूल को कहते हैं, इसलिए कि दुनिया में पहाड़ मुख्तलिफ रंगों के हैं। आपको शायद इत्तेफाक हुआ है कि नहीं देखने का, मुझे प्रैक्टिकली भी कुछ चीज़ों को देखने का मौका मिला। आज आप जाकर गूगल में सिर्फ ये दो लफ्ज़ लिखिए, कलरफुल माउंटेन, जो पहाड़ आएंगे ना सूरत नाहल सूरह फातिर में पढ़ के आए आप पीछे, क्या वो वेव्स हैं और वो क्या पचरंगा कपड़ा होगा और क्या वो रेनबोस होंगी, ऐसी खूबसूरत पहाड़ों की शक्लें। तो जिस रंग का पहाड़ है उस रंग की वो ऊन बन जाएगी। अल्लाह अकबर, वो चीज़ें जो दुनिया में जमाओं का शिकार थीं वो उड़ गईं, तो बताइए बाकी चीज़ों का क्या हाल होगा? उस वक़्त ज़रा सा अपने आप को इमेजिनेशन में लाकर तो सोचें, क्या धुलाई होगी, तभी तो धुने जाएंगे। चलिए यहाँ तक तो एक मंज़र पेश कर दिया अल्लाह सुबहाना ताला ने, अब आगे से क़यामत का दूसरा मरहला, और वो क्या होगा? फ़म्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, तो जिन लोगों के नेकियों के पलड़े भारी होंगे, नोट कीजिएगा, काबिले तवज्जो एक नुक्ता है, और वो क्या है? मवाजीन। आप देखिए कि इन आयतों में एक ही किस्म के वज़न या मिज़ान के एक ही पलड़े का जिक्र है। बाज़ लोग मवाजीन को तराजू से या पलड़े से मुराद लेते हैं, असल में दो तीन लफ्ज़ हैं जो इस वक्त अगर मैं ना उलझाऊँ और सारे को जमा करूँ ना, तो लफ्ज़ वज़न है ना असल में। मवाजीन से मुराद जहाँ नेकियों का वज़न है, यानी हिसाब के वक्त हर शख्स की नेकियों का वज़न करके देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? नंबर एक, क्या ये वज़न मतलूबा मेयार के मुताबिक है कि नहीं। नंबर दो, क्या ये वज़न मतलूबा मकदार के बराबर है कि नहीं। ये दो मुश्किल लफ्ज़ बोले हैं मैंने। देखिए, दुनिया में आप वेइंग स्केल के ऊपर कोई भी चीज़ रख दें, वो आपको वेट बताती है। एक किलो नमक रखेंगे तो भी किलो ही है, एक किलो चीनी रखेंगे तो भी चीनी है, एक ही किलो है। क़यामत के दिन हमारी नेकियों का वज़न क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी होगा। बस मेयार क्या है? क्वालिटी। क्या वाकई उस स्टैंडर्ड की वो नेकी थी कि नहीं? और मकदार क्या है? क्वांटिटी। क्वालिटी कंट्रोल्ड और क्वालिटी कंट्रोल्ड। अल्लाह अकबर, ये तो इतना बड़ा मौजू है कि जिसको अभी मैं समेटने भी लगूंगी ना तो बहुत वक्त लग जाएगा। बज़ाहर हम नेकियों की मकदार देखते हैं, क़यामत के दिन मकदार भी देखी जाएगी, मेयार भी देखा जाएगा, लेकिन एक तीसरी चीज़ भी देखी जाएगी। मैं 3 सेकंड खामोश रहती हूँ, आप लोग सोच सकते हैं कि अगर मैं ना बोलूँ तो आप क्या बोलेंगे। यरहम अकेला। मेयार भी मकदार भी, यानी दोनों चीज़ें हैं कि जी कैसी अच्छी थी चीज़, या तो बहुत अच्छी होती है या बहुत ज़्यादा होती है ना, और बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छी थी। एक तीसरी चीज़ भी है जो फ़र्क कर देगी एक दूसरे से हमारे दर्जों को। जी आप, नियत और
तलब,
लेवल किस वक्त में की, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी तो हो गई। जी आप, नीड ऑफ द आवर, अल्हम्दुलिल्लाह। और जी, और जी आप ही चीज, इखलास, शाकिला, शाबाश। मतलूबा मेयार भी हर शख्स का अलग अलग उसकी शाकिला के मुताबिक होगा। आपकी मेरी इस्तेदात, मेरी स्किल्स पैदाइशी तौर पे थी कि मैंने एक्वायर्ड की, ये वाहबी थी कि कस्बी थी, मेरे घर का माहौल मुवाफिक था कि कह लीजिए कि मुवाफिक था या मुखालिफ था, मुस्बत रवैया था कि मनफी। और इसको आप इस जमा पर गा लीजिए कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, सूरत बकरा 286। अल्लाह हम सब के आमाल को हमारी शाकिला पे भी परखेगा, क्या किया ये नहीं देखेगा। देखिए, दो लोगों ने बिल्कुल बराबर की, दोनों के ग्राम ओंस सब बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, लेकिन एक का बढ़ जाएगा क्या, कि उस की शाकिला में नहीं था नेकी करना और दूसरा तो पैदाइशी नेक था। बात समझ गए? सीधी सी मिसाल है, फजर के लिए उठना, 10 मिनट पहले उठ जाना, एक के लिए बहुत आसान है, वो आदी है, वो मॉर्निंग बर्ड है, नींद ही नहीं आती। और दूसरे को तो 9 बजे तक सोने की आदत थी, वो भी उठा, दोनों 10 मिनट पहले उठे फजर से। अल्लाह, उसका जो इजीली उठ गया उसका पॉइंट अगर एक है ना, तो जो ज़रा मुश्किल से उठा उसको 2 नंबर देगा। इससे ज़्यादा बारीक हिसाब कोई कर नहीं सकता। आपके लिए नेकी मुश्किल है, करिए। मैं एक जुमला बहुत दफ़ा बोलती हूँ और आपने ज़रूर सुना होगा, अगर मैं उन दिनों भी बोलती थी जब मैंने सफ़ील उल जन्ना पढ़ाया था, नहीं है तब नोट कर लें। आम हालात में नेकी मिलती है ना, आप क्लास में रोज़ आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स रूटीन नाउ, और आपको सबक मिलता है, आपकी रोल कॉल लगती है और आपको फ़ायदा हो जाता है। किसी दिन आना मुश्किल होता है, तबीयत बोझल है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, आज बच्चे का कोई प्रॉब्लम है, घर में मेहमान है, रात को देर से सो गए। आम हालात में अजर मिलता है, मुश्किल हालात में नेकी करें तो ईमान मिलता है। और नेकी करने की तौफीक मिलती है। एक कोड वर्ड लिख लीजिए, ज़्यादा नेकियां करने का छुपा हुआ राज, मुश्किलात में भी नेकियां कीजिए। जिस वक्त हम अपनी नफ्स टटोल रहे होते हैं ना, वो वक्त नफ्स टटोलने का नहीं होता, किसी से रिक्वेस्ट करके वहाँ पहुँचने का होता है। आज मैं ड्राइव नहीं कर सकती, कैन यू गिव मी राइड प्लीज़। हस्बैंड से रिक्वेस्ट कर लीजिए, दोस्त से कर लीजिए, किसी तरह किसी के कंधे पे हाथ रख के सीढ़ियाँ चढ़ के वो पीछे सोफे पे लेट जाए, ये नेकी उस दिन बहुत भारी होगी। अल्लाह सुब्हान तआला ने हम इंसानों को बहुत मुख्तलिफ बनाया है। वी आर, मैं तो कहती हूँ शाहकार है हम कुदरत का। इंसान तो अल्लाह का वो शाहकार है कि अल्लाह को हक है कि इन्नी जाइलु फिल अर्दी खलीफा। वाकई अल्लाह को मान है बंदे पे कि खलक तो भी यदि अल्लाह ने जो इंसान को अपने हाथ से बनाया ना, तो ये मास्टरपीस है अल्लाह का। हर बंदे की शाकिला फ़र्क, माहौल फ़र्क, मेलान फ़र्क, इंक्लाइनेशन फ़र्क। किसी को एक नेकी बहुत आसान लगती है, दूसरी मुश्किल लगती। मसलन नमाज, रोज़ा, ज़कात खुल के करें, यानी नमाज भी पढ़ेंगे, रोज़े भी रखेंगे, झूठ से भी बचेंगे, दिल तंग होता है, सदका नहीं देने को दिल करता, ज़कात दे के बहुत खुश हो जाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। एक बंदा है वो नमाज रोज़े में पूरा पूरा है, फ़र्ज़ के बस और जान छुटी, और जहाँ लोग 5 डालते हैं वो 50 डालता है, फ़र्क है ना। अब जिसका दिल तंग है, अपनी भी ज़ात पे नहीं लगाता, कई ऐसे भी होते हैं वो अल्लाह के रास्ते में 5 लगाएगा ना तो उसके 50 गिने जाएंगे, कि इसने बड़ा पेट दिल पे हाथ रख के अल्लाह के रास्ते में डाला है। तो हर शख्स की शाकिला यानी उसके जीन्स की तरफ से उसे हासिल होने वाली सलाहियतें और माहौल के असरात को मद्देनज़र रखते हुए इसके लिए नेकियों के वज़न का एक ख़ास मियार मुकरर किया जाएगा। अगर तो इसकी नेकियों के मवाजीन को इसके मियार के मुताबिक पाया गया तो इसे कामयाबी मिल जाएगी। फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया, वो तो दिल पसंद ज़िंदगी में होगा। ईशा ज़िंदगी को कहते हैं, इसी से लफ्ज़ मईशत भी है, आशा या ईशु ईशतुन, इसी से फिर आगे और भी कई लफ्ज़ बनते हैं हमारी ज़ुबान के। मुराद क्या है कि पसंद वाली ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी जिस चीज़ की ख्वाहिश करता रहता है ना बंदा, अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाने का, क्वालिटी लाइफ बनाने का, वो वहाँ जाके मिलेगी। ये दुनिया ईशातिर रादिया सिर्फ एक सूरत में बनती है, ओनली वन वे कि आपकी मेरी ये ज़िंदगी ईशातिर रादिया बने। इसके ऊपर सवाल लिख लीजिए, क्या दुनिया में भी ईशातिर रादिया बनती है? यस, सूरत नहल में पढ़ के आए हैं, अल्लाह ने कहा कि जो कोई ईमान लाकर अमल सालेह करे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, फलनुहयन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसको एक तय्यब ज़िंदगी देते हैं, और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रह लें तो ईशातिर रादियाँ आपकी। अपनी ज़िंदगी से फ्रिक्शन निकाल दें, तकदीर से लड़े नहीं, उसको कबूल करें। वाई इट हैपेंड विद मी, वाई ओनली मी, Why my kid? Why my daughter? Why my son? What, where I was wrong? What I have done wrong? सब काट के कहिए, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिलइस्लामी दीना। ये है ईशातिर-रादिया, इस दुनिया की जन्नत है ये। जब तक मैं और आप अल्लाह के फैसलों पर राज़ी नहीं होंगे, हम कभी खुश नहीं होंगे। तो पहली चीज़, ईमान के बाद अमल सवाले आपकी दुनिया की ज़िंदगी को ईशातिर-रादिया बनाएगी। दूसरी चीज़, अल्लाह के फैसलों पर राज़ी रहिए, जो मिल गया शुक्र कीजिए, जो नहीं मिला उस पर और शुक्र कीजिए, जो मिल के छिन गया उस पर इससे भी ज़्यादा शुक्र कीजिए। मुझे किसी का मैसेज था, बच्ची हुई, कुछ घंटे ज़िंदा रही और फौत हो गई, और माँ उसी वक्त मुझे फ़ोन कर रही है कि मैं आप इस हालत में इसको गुसल दे सकती हूँ, और वो रो रही थी। तो मैं सोच रही थी कि चंद घंटे का मेहमान उसको मिला, 9 महीने उसके पेट में, या कुछ प्री मेच्योर पैदा हो गई, लेकिन आज वो माँ कितनी तकलीफ़ से गुजर रही है, और अब उसको अपनी तकलीफ़ के साथ ये भी एक दुख है कि इस बच्ची को मैं खुद नहलाऊँ, कैसे नहलाऊँ। रदी तो बिल्लाही रब्बन, पहली बात है मिले तो शुक्र, दूसरी बात है ना मिले तो शुक्र, और सबसे बड़ा दर्जा मिल के छिन गया शुक्र है। मैं राज़ी हूँ, मैंने तेरे से नाराज़ नहीं होना, मुझे तेरी रज़ा अपनी रज़ा से पसंद है। किसी की आंखें नहीं हैं और वो ना भी ना है। किसी ने कहा कि आंखें मांगो, तुम बड़े नेक हो, अल्लाह तुम्हारी सुनेगा, मांगो। कहने लगा कि क़दर अल्लाह अहब इलैया मिन बसरी, मुझे अल्लाह की तकदीर यानी अल्लाह का फ़ैसला जो मेरे बारे में है, यानी मुझे ना भी ना रखने का, ज़्यादा प्यार है अपनी आँखों से, मैं इस पर खुश हूँ। ये मार्फत के दर्जे हैं। आज हम सब दुनिया के हैप्पीएस्ट पर्सन बन सकते हैं। आई एम द हैप्पीएस्ट वुमेन, कहिए अपने आप को। आई एम द मोस्ट ब्लेसड पर्सन, आई एम द मोस्ट ब्लेसड मॉम, आई एम द मोस्ट ब्लेसड वाइफ। हर रिश्ते पे कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी ज़िंदगी इशत रौदिया होगी। तीसरी चीज़ जो मुझे समझ आई है मेरे बहुत ही महदूद से ऑब्जर्वेशन और इल्म से, और वो है وَمَنْ أَحْسَنُ قَالَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کی زندگی عشت ارادی ہے۔ آپ کبھی ریورڈس جو مبلغین ہیں بہت سارے ہیں نا امریکہ میں کینیڈا میں تو بہت سارے ہیں، کبھی آپ ان کے چہروں کی چمک دیکھا کریں، کبھی آپ ان کے چہرے کے اوپر جو ایک پیشن دکھتا ہے کہ انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کا دیکھیں۔ ابراہیم گرین صاحب کو دیکھ لیجیے اور یوسف ایسٹس کو دیکھ لیجیے، اور بھی کئی ہیں نا، آپ کو تو نام آتے ہوں گے زیادہ۔ اللہ کی طرف بلانے والے کی زندگی جیسی زندگی بادشاہ کی بھی نہیں ہو سکتی، یہ عابد کی بھی نہیں ہو سکتی، یہ زاہد کی بھی نہیں ہو سکتی، یہ تہجد گزار کی بھی نہیں ہو سکتی، اللہ نوز دی بیسٹ۔ لیکن عشت رادیا کے لیے آپ کو اللہ کا بننا پڑتا ہے، یعنی اللہ سے تعلق جوڑ لیں، آپ اس کتاب کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ دس از دا کوالٹی لائف۔ مانگی اب کیا مانگتے ہیں، خوف آئے گا مانگتے ہوئے، شام سے پہلے آپ کے پاس ہوگی وہ چیز، نہ بھی ہوگی تو پرواہ بھی نہیں ہوگی، مل بھی گئی تو بھی کوئی کیئر نہیں ہے۔ جب دنیا دل سے نکلتی ہے نا تو عشت رودیہ بن جاتی ہے۔ لکھ لیں یہ بات، ہم سوچتے ہیں کہ لگژریس لائف از عشت رودیہ، کمفرٹر، گدے، نرم گاڑیاں، سیٹڈ، ہیٹڈ، ٹھیک ہے یہ جسم کی لگژری ہے، روح کی نہیں ہے۔ روح کی لگژری کب بنتی ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آج تک کی جو زندگی گزار لی سو گزار لی، فرام ٹوڈے ناؤ 8th November 2018، آج سے آپ ایک نیا جنم لے سکتے ہیں، سارے غم دور ہو جائیں گے، ساری بیماریاں دور ہوں گی۔ یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، فیل کچھ نہیں ہوگا، یو ول فیل آئی ایم جسٹ لائک، وہ کیا کہتے ہیں، بے ہوش ہوتا ہے بندہ تو اس کو کیا فیل ہوتا ہے، ہیپناٹائز نہیں، جیسے آپ ہیں لیکن آپ کی فیلنگس ختم ہو جاتی ہیں، انکانشیس بھی نہیں، ایک اور لفظ ہوتا ہے، کوما بھی نہیں ہے، بہت ایک، یعنی کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دیکھ سب کچھ رہے لیکن فیل نہیں ہو رہا، نم کہہ لیجیے، یا آپ مطلب یعنی آپ وہ چیز، آپ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں لیکن مجھے فیل نہیں ہو رہا، خوشی غم بس ادھر رہے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی۔ دس از اے بگ بیریئر ہیئر۔ یہ زندگی دنیا میں پیسے سے، حسن سے، دنیا کی ترقیوں سے نہیں ملتی، اس بھی وہ بھی ساتھ ہو تو سننے پہ سہاگا، لیکن عشت رودیہ۔ امام ابن تیمیہ کو لوگوں نے جیل میں ڈال دیا اینڈ پہ، تو کہتے تھے انہ جنتی معیش، میری جنت میرے ساتھ ہے، میں تو جیل میں باہر سے زیادہ خوش ہوں، یہاں تو بیٹھ کر رب کو یاد کر رہا ہوں اور اپنے دین کا کام کر رہا ہوں۔ وہ جیل میں بیٹھ کے ترس و تدریس کا کام کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے، فہو فی عشت رودیہ، دل پسند زندگی۔ اور میں کہتی ہوں اگر نان مسلمس کو یہ راز مل جائے صرف اس دنیا کی لگژری کو پانے کے لیے، وہ یہ سب کچھ شروع کر دیں۔ یہ کیسی، وہ کہتے ہیں نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ چیز بندے کو خوشیاں دیتی ہے، اور اس کو پانے کی خواہش کرنی ہے اور اس کی تمنا میں جینا ہے، اس کے لیے کوشش کرنے پڑے گی۔ اور یہ کب ہوگا؟ پیچھے آپ نے وجہ بھی پڑھ لی کہ اللہ نے یہ کس کی ہے زندگی، فام ممن ثقلت موازین، پلڑے بھاری کر لیجئے، اور پلڑے بھاری ہوتے ہیں نیکیوں سے، بھاگ دوڑ سے۔ ففروا الی اللہ والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فاستبق الخیرات اینما تولوا فثم وجه اللہ۔ کتنی تو مثالیں قرآن آپ کو دے چکا، اب تو یہ آخری کیل ٹھکرے ہیں میرے آپ کے دل دماغ کے اندر کہ کچھ کمیاں ہیں اس کو دور کر لو۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو وزن کرنے کرانے والی باتیں ہو رہی ہیں نا، اس کو مزید تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ جو موازین ہے نا، یہ موزون کی بھی جمع ہو سکتی ہے اور میزان کی بھی ہو سکتی ہے، اصل روٹ اس میں وزن ہی ہے۔ اب یہ کیا کس کا وزن ہوگا، پیچھے اس پہ بات بہت ساری ہوئی لیکن آج دہرانا لازمی ہے۔ پہلی بات ہے کہ وہ جن ترازوؤں میں نیکیاں اور بدیاں تلیں گی ان کا وزن ہوگا۔ दूसरी बात यह कि उन नेकियों और बदियों का वज़न होगा। तीसरी बात यह कि साहिब नेकी और साहिब गुना का वज़न होगा। वह हदीस याद होगी कि अब्दुल्ला बिन उमर की पतली पतली टांगों का मजाक उड़ाया लोगों ने जब वो खजूरें तोड़ने के लिए ऊपर गए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आज इब्ने उमर की पतली टांगों का मजाक उड़ाने वाले नहीं जानते कल इनकी एक एक टांग मीज़ान में ओहद पहाड़ से भी भरी होगी। इंसान तो ले जाएंगे। और सूरत काहफ में क्या पढ़ते हैं हर जुमे में, फला नुकीम लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। कुफार का तो उस दिन पलड़ा ही नहीं रखा जाएगा। आपने फरमाया एक मोटे ताज़े काफिर को लाया जाएगा और जब पलड़े में रखा जाएगा तो मच्छर के पर के बराबर भी उसका वज़न नहीं होगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ये अरबी ज़ुबान का मुहावरा भी है, प्रोवर्ब भी है ये। और अल्लाह की अदालत पर ये फैसले होंगे कि इंसान जो अमाल की पूंजी लेकर आया है वो वज़नी है या बेवज़न है, और ये कैसे किस तरह से। इसको एक छोटी सी चीज़ से समझिए। आप तो बहुत खुश हैं जी, बड़ी आज नेकियां लेके आ गए, पता चला अंदर खोटी थी, अंदर कीने थे, बुग़्ज़ थे, रियाकारी थी, दिखावे थे। और सूरत काहफ के बिल्कुल एंड पे 104 105 में नहीं पढ़ चुके कि क्या मैं तुमको ना बताऊं आमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम कौन है? वो लोग जिनकी सारी ज़िंदगी की कोशिशें दुनिया की ज़िंदगी के लिए गुजरी और वो ये समझते रहे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो याद रखिए, रियाकार, दिखावे वाला और दुनिया के लिए काम करने वाला, अब ज़ाहर लगे कि ये दीन के लिए कर रहा है, ये सारे ही लोग उस दिन परेशान होंगे। और सूरत अल अराफ में भी आप पढ़ चुके, आयत नंबर 9 थी गालिबन, मिसाल याद है आपको। आप 5 तोले का एक सेट लेकर जाते हैं कि इसको बेच देते हैं, पैसों की ज़रूरत है, और आप गोल्ड रेट चेक करते हैं, 50 रुपये का मिसाल है कि तोला है, वट एवर, जो 50,000 का तोला है। आप कहते हैं 5 तोले हैं, चले 2.5 लाख तो मिल ही जाएंगे, लेके जाते हैं। जो ही आप सुनार को देते हैं, क्या वो उस अपने तराजू में डालकर आपको 2.5 लाख दे देता? पहले तो आपके हाथ से लेकर डोरी काटेगा, फिर नीचे लटकते हुए मोती काटेगा, तार काटेगा, फिर मशीन पे रखेगा, तो वो 5 में से तो 4 रह गया। फिर वो कहेगा इसके ऊपर अंदर भी नग झड़े हुए, एक एक तोला इसका निकाल दो। फिर वो नए और पुराने का वज़न निकालेगा, फिर खोट निकालेगा, एंड पे 5 में से 2.5-3 तोले के पैसे आपके हाथ में 1-1.5 लाख पकड़ा के कहेगा जाइए। ये होगा क़यामत के दिन। हम 5-5 तोले के सेट लेकर फिर रहे हैं, लोग तो हमें पता नहीं क्या कहते हैं, ये और ही भारी होंगे, लेकिन उसके अंदर खोट खपट निकलेगी तो अंदर से वो 1.5-2 तोले ही निकलना है। हमेशा डरे, नेकी करके डरना नेकी है और गुनाह करके निडर होना ये गुनाह है। प्योर गोल्ड का वज़न ज़्यादा मिल जाता है, स्टोनी जो सेट्स होते हैं ना फैंसीज, एंड पे उसके बाद में कम निकलता है। वो नेकियाँ जो इखलास के साथ प्योर खालिसत लिवजहिल्लाह होंगी ना, इंशाल्लाह उनका वज़न ज़्यादा होगा। और फैंसी नेकियाँ, पंपी ग्लैमरी, उधर देख उसकी नज़रों में मुझे बड़ा बनाओ, मैं देखूं लोग मेरी वाह करें, मेरे बगैर नहीं, वन मैन शो, और सारा काम ही मैंने उठाया हुआ है, सारा स्कूल ही मेरे दम पे चल रहा है, मेरे बगैर कुछ हो नहीं सकता, इसमें से बहुत सारे स्टोन्स ऊपर से निकल जाने हैं। फिर अंदर जो कोई प्योर रह चुका होगा वो मिलेगा। अपने लिए दुआ करते हैं, हम सब एक दूसरे के लिए भी दुआ करें। हम दूसरे के लिए करेंगे ना तो हमें अपने लिए लगेगी, क्योंकि फरिश्ता फिर हमारे लिए करेगा। तो मैं तो आपके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह आपकी नेकियों को क़यामत के दिन भारी कर दे, कोई नकली ना। और एक और ज़रा सा समझ लें, एक और बड़ी ख़तरनाक बात है, हर बात से बेनियाज होकर सुनिएगा। कोई आपके पास आया, और ये वाकया मैंने एक आज की बात में शेयर भी किया था कि एक बहुत अच्छे शरीफ नफ्स इंसान थे, वक्त आने पे लोगों को कर्ज दे दिया करते थे, या जैसे वो नहीं होता क्या बोलते हैं, चीज़ रख के लेते हैं जो गिरवी रखना, या जी रहन रखना, वो करते थे। एक दिन एक शख्स बड़ी जल्दी में उनके पास आया, कहने लगा कि कर्ज़ा चाहिए, तो ये सोना मेरा थोड़ा रख लीजिए तो मैं आपको इतने दिन में वापस कर दूंगा। पैसे भी दे देते थे, अब तो ये सोने का डली दे रहा था। खैर, इसने कहा कि ठीक है, कब दोगे? 2 माह बाद दे दूंगा। ठीक है, दे दूँ के उसको पैसे दिए, वो रख के पकड़ के उसको लॉकर में रख लिया। जब लॉकर में रख दिया, भूल के कुछ अर्सा गुजरा, 2 महीने के 3-4 गुजर गए, इनको याद आया कि वो शख्स तो वापस ही नहीं आया। कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं आया तो ना सही, मेरे पास सोना तो है ही है। कुछ माह के बाद इनको उसकी पैसे की ज़रूरत पड़ी, कहा कि फिर मैं बेच लेता हूँ। वो उठाकर सोने की डली ले गए सुनार के पास, तो सुनार ने देखी रखी, कहने लगा जी ये क्या, इसका क्या वजन है? कहेंगे तो नकली है, ये तो जाली है। अब यहाँ समझिएगा, बहुत ही खौफनाक बात है। कल तक जिस सोने की डली को सोना समझकर उन्होंने लॉकर में रखा हुआ था, अब उन्होंने क्या किया, वो लॉकर से निकाल कर बाहर शीशे की अलमारी में रख दिया। कुछ लोगों की यही औकात होती है, आप उनको बहुत कीमती समझ के अपने दिल में रखते हैं, जिस दिन पता लग जाए ना ये सोना नहीं था, ये नकली थे, ये जाली थे, वही चार में से दूसरा गिरो। जाहिर बंदा बड़ी नेकियां करता है लेकिन हक को कबूल नहीं करता, उनको दिल से निकाल कर बाहर रख दें, हेलो हाय बाय पे ले आइएगा। अल्लाह ना करे क़यामत के दिन आपकी मेरी जाली नेकियां हों और हम मारे जाएं, जालसाजी में तो और भी मारे जाएंगे। चले पैसे, आप देखिए ना कोई नकली नोट चलाने की कोशिश करे तो ये तो नहीं होता कि उसकी चीज़ नहीं मिलती, उसको पकड़ के जेल में डालते हैं कि ये नोट लाए कहाँ से हो। याद रखिए हर वो नेकी जिस पे अल्लाह और उसके रसूल की मोहर नहीं है। कुल्लु मुहदसतें बेदा वकुल्लु बेदतें दलाला वकुल्लु दलालतें फिन्नार। अल्लाह के नबी हर खुतबे से पहले ये तीन चार लसेंट पे पढ़ते थे। दीन में हर नया काम मुहदस है और हर मुहदस बिदत है और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में जाने वाली है। तो जितने शौक और माशाल्लाह तजुर्बे के साथ हम दुनिया की चीज़ें खरीदते हैं ना, माहिर होते हैं कई लोग शॉपिंग के, असली नकली का फ़र्क होता है, मेड इन जापान और मेड एस जापान का फ़र्क उनको पता होता है, ये वाकई रियल में जापानी कपड़ा है या लुक लाइक जापानी है उनको पता होता है। इसी तरह नेकियां करते वक्त भी सोच के कीजिए, ये कोई नेकी थोड़ी है जो जिधर चला भाग गए, ब्रांडेड नेकियां कीजिए। और वल्लाह ही आज के दौर का सबसे बड़ा ब्रांड दीन की खिदमत, कुरान सीखिए और सिखाइए और आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करें। फ़हुआ फ़ीशत रादिया, दुनिया भी इंशाल्लाह राज़िया होगी। यहाँ इस आयत से ये तो नहीं लग रहा कि वो वहाँ ईशत रादिया होगी, यहाँ भी हो जाएगी, लेकिन इसके बरक्स वम्मा मन खफ़त मवाज़ीनु, और जिसकी नेकियों के पलड़े हल्के होंगे। आप ले रहे हैं फेसबुक पे, इधर क्यों नहीं रखा? और जिनकी नेकियों के पलड़े हल्के हुए, फ़ुम्मुहु हाविया, तो इसका ठिकाना ये गड़ा होगा। वमा दरा कमा हिया, और तुम क्या जानते हो कि वो क्या है? नारुन हामिया, आग है दहकती हुई। इसकी तो कुछ तफसीर ना करूं तो बेहतर है ना, दिल ही नहीं कर रहा। सबको पता है जो सुना है ना उसका ऑपोजिट है ये। कुछ लोग बज़ाहर बड़ी नेकियां करने वाले लेकिन नेकियों में कोई वजन ही नहीं, नेकियों की कोई कीमत ही नहीं क्योंकि नकली थी, जाली थी। याद रखिए बहुत सारे लोग सिर्फ अपने नफ्स की पूजा के लिए नेकी कर रहे होते हैं, मैंने करना है, मेरा नाम हो, मैं ये पढ़ाऊंगी, पढ़ाना नहीं आता भी सही, पढ़ा ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं ठीक, और पढ़ा रहे हैं। वल्लाह ही मैंने ऐसे ऐसे लोगों को कुरान पढ़ाते देखा है कि जिनको अभी खुद पढ़ने की ज़रूरत थी। ऐसे ऐसे लोग लोगों को तजवीज़ सिखाते हैं जिनकी अपनी तजवीज़ ठीक नहीं है। ऐसे ऐसे लोग कुरान की वो गिरे सुलझाना चाहते हैं और बीच में आके फंस जाते हैं आधे रास्ते में। कच्ची पक्की नेकी मत फैलाएं, अधूरा इल्म बहुत नुकसान देता है। और आज हकीकत है हमारी उम्मत में एक तो ये भी कसूर है कि इल्म का शौक नहीं है, लेकिन आप 90% लोगों को देखिए अधूरा इल्म दे रहे हैं, आधी बात करके आगे संभली नहीं छोड़ दिया, चलो बाकी फिर देखेंगे, चलो किसी से पूछते हैं। यहाँ खफ़त में गुनाह भी हैं लेकिन वो नेकियाँ जो बेसलेस थी। आप खुद सोचिए एक डॉक्टर की दुकान खोलकर बैठ जाए और सर्टिफिकेट ही जाली हो तो क्या होगा? इन मुल्कों में तो कोई सोच भी नहीं सकता। इधर उधर तो आपको मिसालें मिल जाएंगी। यहाँ लफ्ज़ हाविया आया और उम्मुहु हाविया, उसकी माँ हाविया, यानी जैसे माँ अपनी गोद में उस बच्चे को लेती है ना, इस तरह हाविया नाम की जहन्नुम उसको अपने अंदर लेगी। आप पीछे पढ़ चुके हैं जहन्नुम के नाम, पढ़ चुके हैं, मुझे याद भी है कि हमने इकट्ठे सारे जमा भी किए थे। जहन्नुम का वो हिस्सा जहाँ ख्वाहिश परस्त लोग डाले जाएंगे वो हाविया है। हाविया हवा यहवी से है, ऊपर से गिराना, नीची जगह गिरना, तो घड़ा बन जाता है ना, आप प्रेशर से ऊपर से कोई चीज़ फेंके तो वहाँ गह खड्डा बन जाता है ना, तो हाविया में उस खड्डे में अल्लाह उन लोगों को डालेगा जो हवाओं के पीछे भागते थे। हवा, और ये बात पीछे कहाँ पड़ी है याद कीजिए, इन्नल मुनाफिकीना फिर दर की असफली मिनन्नार। छठे पारे की आखिरी आयते हैं, पांचवे पारे की आखिरी हैं गालिबन, कि बेशक मुनाफिकीन जहन्नुम की सबसे गहरी वादी में होंगे, गहरी वाद में होंगे। ख्वाहिशों के पीछे भागने वालों के पलड़े बड़े हल्के होंगे। देखिए, हम तो बेचारे उन लोगों का जीना दोबर कर देते हैं जो बेचारे दुनियादारियों में पड़े हुए हैं। और एक मारूफ हमारा एक कल्चर है जी, गाने बजाने, फिल्में, ड्रामे और कुछ यानी बेहयाई, इसको ही बुरा समझते हैं ना हम। ऐसे लोगों को गुनाहगार समझते हैं जो अपेरेंटली फासिक होते हैं, मान लेते हैं। यहाँ उससे भी बढ़ के बात है। खफत मवाजीनू क्यों है? वो तो कुछ और होना चाहिए था। ज़रा सा आप इसके फ़र्क को समझें, एक नज़र में ये फ़र्क समझ नहीं आता। फिर समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, एक है असहाबुल यमीन और उसके मुकाबले में असहाबुल शिमाल, समझ आ रहा है? नेकियों वाले जन्नत वाले चले जाएंगे और वो दूसरी तरफ। यहाँ मसला सकुलत और खफत का है, इसमें तकाबुल नहीं है, एक ही चीज़ है। यानी कुछ की नेकियाँ भारी, कुछ की नेकियाँ हल्की, ये मुराद है। ज़ाहिर हम क्या कहते हैं, कुछ की नेकियाँ भारी, कुछ के गुनाह भारी। फिर तो क्या होना चाहिए था, गुनाह पे भी सकुलत आता। यहाँ क्या है, भारी नेकियाँ, हल्की नेकियाँ। और हल्की नेकियाँ वो होती हैं जो दिखावे की होती हैं, वही जो नेकियाँ पीछे आपको बताया वलीद बिन मुग़ीरा की जो नेकियाँ थी, वक्त आने पे पलट गया। वो माशरे का वो नासूर था जिसने अपने नाम से नेकी की थी। याद रखिए, बाज़ दफ़ा हम काम दीन का करते हैं लेकिन वो हमारा नाम होता है। मेरा नाम, मेरे नाम के बगैर काम नहीं होगा। मेरा नाम किधर है? मैं खुद करूँगी, मैं ये काम बताऊँगी, मेरा ये होगा। अब आप का नाम आ गया लेकिन नेकी की क्वालिटी कम हो गई, ना आपको वो तरीका आता था, ना सलीका आता था, ना आपने वो पूरा सीखा, ना ट्रेनिंग ली। चंद दिन बाद वो नेकी ख़त्म हो जाती है, दुनिया में भी ख़त्म होती है। जिसमें इखलास होगा वो बाकी रहेगी, और जिसमें तरीका ठीक होगा वो बाकी रहेगी। ये याद रखिए, अल्लाह की कबूलियत के दो साइंस हैं दुनिया में। इमाम मालिक की मौता बड़ी मारूफ हो गई थी, उनको देखकर लोगों ने भी कॉपी करनी शुरू कर दी। मौता, मौता कहते रौंदना, पाँव के नीचे रौंदना, यानी इतना इल्म लिया कि रौंद लिया अपने आप को, ये मिसाल है। लोगों ने उनके नाम से कॉपी करते हुए नाम कुछ अपने भी रखे। कोई उनके पास आ गया, कहने लगा इमाम मालिक आपकी किताब की तो कॉपियाँ होने लग गई हैं, यानी नकली कॉपियाँ हो रही हैं। तो उन्होंने उस वक्त एक लफ्ज़ बोला जो आज 100% सच साबित हुआ, कहने लगे माँ कान अल्लाह ही बकिया, जो काम अल्लाह के लिए होगा ना वही बाकी रहेगा। और आज सिर्फ एक मौता मिलती है मार्केट में, इमाम मालिक की मौता। इखलास के बग़ैर की नेकियाँ जड़ कटी होती हैं, तरबियत के बग़ैर की नेकियाँ जन कटी होती हैं, और इल्म के बग़ैर जो काम शुरू कर देते हैं सीखने सिखाने पढ़ने बढ़ाने का, वो जड़ कटा होता है। या तो फिर आप उसकी पूरी ज़िम्मेदारी लें, लोगों का वक्त ज़ाया ना करें। कई लोग 10-10 साल एक एक जगह जाके पढ़ते हैं, एंड पे कुछ भी नतीजे में नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ाया उन्होंने भी खुद पूरा नहीं पढ़ा था, अभी उन्होंने सीखा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि नेकियां भारी, नेकियां हल्की, और हल्की नेकियां वही होती हैं जिसमें या तो नीयत ख़राब होती है या तरीका ख़राब होता है। और यहाँ खाविया को देख लिए तो ख्वाहिशों से भरी हुई नेकियां, खुद पसंदी वाली नेकियां, दिखावे वाली नेकियां, शोहरत वाली नेकियां, मेरा नाम कहाँ आएगा, मेरा क्या टाइटल है, मुझे आप किस जगह फिट करते हैं, मैं कहाँ, मैं कौन, टेल मी हु एम आई, मेरा क्या नाम है। तो सेल्फलेस होकर दीन का काम कीजिए, सेल्फलेस होकर दीन का काम करें। मेड बाय, कुछ लोगों की पेंटिंग है नीचे हाथ लिखा, हाथ से लिखा होता नाम, ये मेरा नाम है, ये मैंने बनाया। आप क्यों लिखते हो? अल्लाह ने तो दरख्तों के नीचे अपना नाम कोई नहीं लिखा, वो खुद बोल के बता रहे हैं कि है अल्लाह खालिक कुल्ली शयइन। तो सेल्फ प्रोजेक्शन से निकल के काम करें दीन का, छुप के अल्लाह से कि अल्लाह मुझे वो छुपा हुआ तार बना ले जिसके बगैर दीन की गाड़ी ना चले। मुझे फ्रंट सीट नहीं बनना। हादसे में सबसे पहला शीशा टूटता है, खतरे में होता है वो बंदा जो फ्रंट एज पे आ जाता है। छुप के काम करें, बच के काम करें, ठीक है। फिर अगर आपके सामने अल्लाह आपकी नेकी ले आता है तो तिल का बुशरतुल आजिला। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी हम छुपते हैं, हम नहीं चाहते हमारी नेकी की शोहर हो, तो फिर भी हो जाती है। कहा तिल का बुशरतुल आजिला, ये अल्लाह की जल्दी मिलने वाली खुशखबरी है। तो अल्लाह से दुआ करें हम सब अपने लिए, अल्लाह के देखने के मेयार और है, हमारे मेयार और है। और एक आखिरी बात करके फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं, और वो क्या है, आप देखिए कि एक देखना होता है आम शख्स का, और एक देखना होता है एक्सपर्ट का, बात समझिएगा। आप और मैं घड़ी से टाइम देखते हैं ना, आप और मैं जब भी घड़ी पे देखेंगे उसकी सुइयां देखेंगे ना, किसी मैकेनिक के पास जाइए और उसको कि मैंने आपको घड़ी दिखानी है, तो क्या वो सुइयां देखता है? आप उसको टाइम दिखाने गए हैं? नहीं, वो फौरन उसको घुमाएगा, उसका शीशा हटाकर उसकी पीछे की चीज़ें देखेगा, एक्सपर्ट जो है वो। डॉक्टर के पास जाएंगे, आप सब देख रहे हैं कि आपका, आपके गले में आवाज़ आ रही है, थूक कुछ भी है, तो डॉक्टर आपका मुंह नहीं देखेगा, वो स्टेथोस्कोप डालकर या अपनी चीज़ों में टूल्स के साथ आपके अंदर से गले को और लंग्स को देखेगा ना। जिस तरह एक्सपर्ट्स अंदर की चीज़ देखते हैं ना कि अच्छा ये नक्स है, ये घड़ी इधर रुक गई, इसमें ये हो गया, इसमें वो हो गया, अल्लाह सुबहान तआला बाहर से ज़्यादा अंदर देखता है। इस वक्त भी आप और मैं सब एक ही जगह बैठे हैं ना, चले मेरा रुख इधर है, आप सबका तो इधर ही है ना, आप सब बराबर ही हैं, टेढ़े मेढ़े थोड़े से हुए हैं मैं आज, कोई बात नहीं, लेकिन इट्स ओके, हो जाता है। लेकिन अल्लाह की निगाह में आप सबका यहाँ बैठना बिल्कुल मुख्तलिफ है, कोई फोकस्ड होगा, कोई नहीं होगा, कोई मुश्किल से आया होगा, कोई आसानी से आया होगा, किसी के बस वक्त ही इतना सा था वो भाग के आ गया, और कोई कुछ और कोई कुछ। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हशर के दिन नशर ना करें। मुझे लगता है बिग मिरर्स लगे हुए चारों तरफ क़यामत के दिन में, और अंदर बाहर बहुसिल माफिस सुदूर। अल्लाह ताला आपकी मेरी सलाह फरमा दे। मिलकर तिलावत करें, अब प्ले नहीं कीजिएगा, आप लोग सब मिलकर एक आवाज़ से इस तरह करें कि पता चले कि आपने इसका एसेंस ले लिया। अल्लाह अकबर, ये लफ्ज़ आपके दिल तक गए। चलिए अब अगली सूरत को देखते हैं और फिर दुआ करेंगे कि जो कमी बेशी है हमारे अंदर वो इस सूरत से पूरी हो जाए। नेक्स्ट सूरा है सूरत तकासुर, 102 नंबर की सूरत है, 8 आयतें हैं, मक्की सूरत है, 2 पैराग्राफ हैं सूरत के भी, 1-5 तक। पहला टॉपिक, क्या कब्र में जाने तक दुनिया में मशगूल रहोगे? हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कब्र में टांगे गई हुई हैं और अभी भी दुनिया नहीं छूट रही। और फिर आयत नंबर 6-8, दुनिया की कसरत का सबब आखरत पर नजरें ना होना। पूरी सूरत का मरकजी मजमून ले लीजिए, दुनिया परस्ती और तकासुर से बचो वरना दोजख में जाओगे। कब्र और आखरत की तैयारी करो, ना शुक्रे ना बनो, और सबसे बढ़कर क्या कि तुम्हें नेमतों के बारे में जवाब देना पड़ेगा। ये सूरत मक्का के दूसरे दौर में नाजिल हुई, 4-5 नबी के बिटवीन, ऐलान आम हो चुका था, कुरैश की मादा परस्त क़्यादत की दुनियादारी पर सख्त गिरफ्त की गई, क्योंकि जब लीडर्स करप्ट हो जाते हैं ना तो कौमें भी करप्ट हो जाती हैं। इस सूरत का भी रब्त है आगे पीछे से, पिछली सूरत अलकारिया में अच्छे और बुरे अमाल के तोले जाने का ज़िक्र था, यहाँ इस सूरत में अच्छे अमाल और बुरे अमाल की वजाहत की गई कि वो होते क्या हैं, जिनकी रोशनी में इंसान दोजख से बच के जन्नत हासिल कर सकता है। और इसे आगे एक बड़ी खूबसूरत सूरत हम पढ़ने वाले हैं, सूरतुल असर, जिसमें 4 बातों पर जल्द से जल्द अमल करने का हुक्म है ताकि खसारे से बच जाओ। और इस सूरत में वाकई जिस खूबसूरत तरीके से इंसान के अंदर छुपी हुई जो माल की मोहब्बत है ना, उसका तذکرہ किया गया ना, ऐसे लगता है जैसे चोर पकड़ा गया, अंदर का चोर पकड़ने वाली ये सूरत है। कोई जाने ना जाने, तुमको तो पता ही है कि तुम किधर भाग रहे हो, तुम्हारी भाग दौड़ किसी तरह से किस तरफ है, اور اس صورت کے ساتھ ایک روایت آتی ہے ابن ابی حاتم ابو بریدہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ انصار کے دو قبیلے تھے، بنی حارثہ اور بنی الحرس۔ دونوں قبیلوں کا آپس میں مقابلہ چلتا تھا، فخر کرتے تھے اپنے بڑوں پہ، ہمارے بڑے تمہارے بڑے، حتیٰ کہ ایک موقع پہ ایک دوسرے پہ فخر کرتے کرتے قبرستان تک جا پہنچے اور اپنے مردوں کے کارناموں پہ فخر کرنے لگ گئے۔ اس پر کہتے ہیں کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب اس کو اگر اس کی شان نزول میں نہ بھی ڈالے نا، لیکن بات سچ ہے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ انسان کی طبیعت کی وہ باتیں اس صورت میں کھولی گئیں جس کو اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ امام بخاری ایک روایت کو لاتے ہیں، ابن جریر بھی اسی کو عبی بن کعب کے قول میں کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، لو ان علی ابن آدم وادیین، اگر ابن آدم کے پاس دو وادیاں بھر کر مال بھی ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھرتا۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو بات تو سچ ہے، حل میں مزید کی ایک کیسی کیٹ ریس کا شکار ہے آج کا بھی انسان، کوئی اینڈ ہے ہی نہیں ہے۔ نیڈ سے تو بہت اوپر بڑھ کے وانٹس پہ جی رہے ہیں۔ نیڈ تو ایک چھوٹے سے چند انچ کے ٹکڑے سے بھی پوری ہو رہی تھی آج سے 5-10 سال پہلے، آج ہر سال کے بدلتے ہوئے نمبر کی دوڑ کیا ہے۔ آئی ڈونٹ نیڈ 2, 3, 4، آئی نیڈ ایکس، وہ آئی ایکس ہے یا وہ دوسرا ایکس ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ آج حقیقت میں یہی بات ہے۔ اور ایک روایت آتی ہے حضرت علی کا کال، ترمذی اور ابن جریر بھی کہتے ہیں اس کو، کیا لوگ عذاب قبر کے بارے میں برابر شک میں پڑے رہے یہاں تک کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر نازل ہو گئی، یعنی اس صورت میں عذاب قبر کی طرف بھی اشارہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے دل سے اس صورت کو پڑھنے کے بعد دنیا کی محبت نکل جائے۔ دنیا پرستی جائز نہیں ہے جیسے بت پرستی جائز نہیں ہے، یہ جملہ لکھ لیجئے۔ بہت سارے لوگ آج بت پرستی کو تو شرک کہتے ہیں، دنیا پرستی کو کیا کہتے ہیں آپ؟ مال پرستی کو کیا کہتے ہیں؟ اور ہمارے ہاں تو لفظ بڑا مشہور ہے، آپ کا پرستار، تو وہ پرستار کچھ ہیروز کے اور ہیروئنوں کے نہیں ہوتے، آج اس دنیا کے بھی بڑے پرستار ہیں۔ یہ دنیا جتنی پرانی ہوتی جا رہی ہے نا، اتنی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ بڑھاپے میں انسان کا حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ یہ دنیا جب نئی نئی تھی تو اتنی فینسی نہیں تھی، انسان غاروں سے نکل کر چلے مٹی کے گھروں میں آئے ہوں گے، اب پرانی ہو گئی ہے نا اور خوبصورت ہو رہی ہے۔ یہ دنیا بڑھاپے کے ساتھ اور خوبصورت ہو رہی ہے اور کشش اس کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، اور آج تو اس نے انسان کو اتنا محو کر دیا کہ سب کچھ دینے والے کو ہی بھول گیا کہ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ آج کے انسان کے پاس اللہ کے لیے وقت ہی نہیں، اس لیے کہہ دیا اللہ کوئی نہ مانو، گلٹی ختم کر دو۔ پہلے بندے کے پاس نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا تو گلا ہوتا تھا، ہائے نماز، ہائے نماز، کیا کروں، گاہک آ گئے، کیا کروں، شاپنگ کر رہی تھی، کیا کروں، سنار کے پاس تھی، جیولر کے پاس تھی۔ آج اس کا آسان حل کیا ہے کہ یہ گلٹ تو ختم کرو نا دل سے، ہے ہی کوئی نہیں اللہ، کچھ نہیں کہا اس نے، ہے اللہ پر ہی از ویری نائس، ہی ڈزنٹ نیڈ آور نمازیں۔ آج یہ ایٹیچیوڈ ہو گیا، جیسے گھر میں بزرگ ہو کچھ نہ بھی کہے تو گلٹ ہوتا ہے کہ وہ آنے جانے کو دیکھے گا یا وہ کسی چیز کا تقاضا کرے گا تو کہتے ہیں نکالو ان کو گھر سے، سٹریس ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے۔ ہم کچھ نہ بھی کریں لیکن ان کو پتہ تو لگ جاتا ہے نا کہ ہم گھر سے باہر رہے ہیں۔ جیسے گھر کے بزرگوں کو آج آؤٹ کیا نا، نعوذ باللہ، آج سب سے بڑی ہستی کو بھی آؤٹ کر دیا اس دنیا کی کثرت نے۔ دیکھیے ہر چیز کا ایک تقابل ہوتا ہے نا، شریک ہوتا ہے، ایک بادشاہ تو اس کا شریک دوسرا ہوگا یا کچھ اور۔ اللہ کے شریک پہ آج ہم نے دنیا کو رکھا ہے، بعد میں جا کے اس جملے کو سوچئے گا۔ آج خدا کے مقابلے میں، خدا کا لفظ جان کے بول رہی ہوں کیونکہ اللہ کے مقابلے میں رکھ نہیں سکتے ہم، لیکن کوششیں کچھ ایسی ہیں کہ ہم نے خدا پرستی کو دنیا پرستی سے ریپلیس کر دیا۔ پوری زندگی کی دوڑ، پیدا ہوتے ہی بچے کے لیے ڈریمز، کیا پڑھے گا، کدھر جائے گا، کیا بنے گا، کن سکولوں میں جائے گا، کیا کھائے گا، کیا پلانرز بنے پڑے ہیں، لیکن اس پلان میں لفظ اللہ کی کمی ہے۔ تو آئیے ذرا سا اس کو دیکھ لیں، اور شرمندہ ہوں. مجھے تو لگتا ہے یہ شرمندہ کرتی ہیں صورتیں. اگر واقعی شرم بھی آ گئی تو اللہ شاید ندامت کے آنسو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحاکم التکاثر, تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. یہ اتنا لمبا ترجمہ میں نے اس کا کیوں کیا؟ عربی کے کتنے لفظ ہیں؟ دو. الحاکم, ادھر آپ کوما بھی ڈال سکتے ہیں, اور التکاثر, دو لفظ ہیں نا. اردو میں مختصر بھی کر دوں گی نا, تمہیں غافل کیے رکھا بہتات کی طلب نے. تو پھر یہ جو میں نے پہلے جملہ بولا ایک دوسرے کی طلب میں, پہلا جملہ دوبارہ بولتی ہوں, تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال دیا. تو یہ ایک دوسرے سے بڑھ کے کدھر آ گیا ہے؟ لفظ تکاثر کے اندر الف, سمجھیے گا. کسورہ کیا ہے؟ کثرت, اور کاسرا بن گیا. پڑھے اپنے باپ, باپ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ الف لگ جاتا ہے نا اکثر چیزوں میں, تو تقابل ہے, مقابلہ, مناظرہ, مباہلہ. بات سمجھ گئے؟ تکاثر لفظ ہے, تکاثرا نہیں ہے. تکاثر میں جو الف ہے نا, اس کا ترجمہ ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر, کمپیٹنگ ادرس, یہ بات ہے. حت زرتم المقابر, یہاں تک کسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو. زرتم زیارت ہے, زارا یزورو سے گھومنا پھرنا, یعنی زیارت کرنا. مقابر مقبرے سے ہے. پتہ کیا چلا کہ تکاثر کے معنی مال جمع کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے بھی ہیں, اور مال و دولت کی کثرت پر فخر کرنے کے بھی ہیں. دولت انسان کے پاس چاہے جتنی بھی ہو, اس کی طبیعت اس سے نہیں بھرتی, اور وہ بدستور مزید حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے. حت تزر تم المقابر, یہاں تک تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو. انسان ساری زندگی مرنے کی تیاری کرتا ہے, ساری زندگی جس گھر کو ہم بناتے ہیں پھر اس میں جائیں گے کئی سو سال تک, وہ ہماری قبر ہے. یہ دنیا کے گھروں میں تو 5-10 سال رہ لیں تو بڑی بات ہے, اللہ اس سے بھی زیادہ رکھوا دے, لیکن ساری زندگی مرتے دم تک جو فکر ہماری تھی وہ دنیا کی تھی. لیکن انسان کی حرص اور حوث کے پیمانے کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا سورۃ حدید کی آیت 20, اے لم انما, خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی. اس میں چار مراحل کا ذکر ہوا تھا, اس میں ایک جملہ آیا تھا تکاثروں فی الاموال والاولاد. جی بالکل. تو پتہ کیا چلا کہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی دنیا کی دولت کی طلب بڑھتی ہے. دیکھیے بچپن میں پیسے تھوڑے ہوتے ہیں, بچپن میں تو آئے بھی ایک ٹافی سے بھی خوش ہو جاتے ہیں, ذرا سے بڑے ہوئے تو ایک کھلونے سے خوش ہو گئے, اور بڑے ہوئے تو پینسل باکس, شارپنر باکس ماں باپ نے دلا دیا تو خوش ہو گئے چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ. اور ناخوش ہونا ہے تو ذرا کسی بچے کی ایک ٹافی لے کر دیکھیے, ایسے لگے گا کسی نے اس کی جائیداد لے لی. غم بھی چھوٹے, خوشیاں بھی چھوٹی. پھر جوانی آتی ہے, پیسے کی طلب بہت ہوتی ہے لیکن ہرس نہیں ہوتی. ہرس کا مطلب پتہ کیا کہ جمع کر کے رکھ دیں, جتنا آیا خرچ دیا, بلکہ اس سے زیادہ ہی خرچ کرتے ہیں آج کل, تو وہی کلچر ہے. بڑھاپے میں مال جمع کرنے کی ہرس ہوتی ہے. جوانوں اور بوڑھوں میں اکثر جو ٹسل لگتی ہے وہ یہی ہوتی ہے, بیٹا خرچ کرنا چاہتا ہے, باپ کہتا ہے ہاتھ روک کے خرچ کرو. تو مال کی محبت وقت کے ساتھ بڑھتی ہے. اور حدیث ہے کہ دو چیزوں میں بوڑھے کا دل کبھی, بوڑھے کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے, ایک مال کی محبت اور ایک اور جینے کی طلب. ابھی اور جینا, کوئی بات نہیں, کل سوف تعلمون, بہت جلد میں معلوم ہو جائے گا. ثم کل سوف تعلمون, پھر کوئی بات نہیں, بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں ان صورتوں میں ہر چیز دو دو بار ہے. جیسے کسی کو بہت دفعہ کہہ چکے ہو نا تو وہ نہ مانے تو پھر آؤ کہتے کہہ نہیں دیا, پھر کہہ رہی ہوں, سن لو. کیا سوف تعلمون, سورۃ نبا یاد آئی آپ کو؟ کل سیعلمون ثم کل سیعلمون, وہی انداز ہے. 4-5 آئی تھی سورۃ نبا کی, یہاں بھی یہی. کیا پتہ چلا کہ ابھی تم لوگ تکاثر کے نشے میں مست ہو, اس وجہ سے موت کا تصور بھی ذہن میں لانے کو تیار ہی نہیں ہو. مگر یاد رکھو وہ وقت دور نہیں جب موت خدا آ کر تم سے ملاقات کرے گی. کیسے؟ سورۃ جمعہ آیت 8 یاد ہے, قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, आप कह दीजिए वो मौत जिससे तुम भागते हो, भागते हैं ना, अच्छी खुराक खाने, दवाइयाँ, चेकअप्स, ये ना हो, ऑर्गेनिक फूड, हेल्थ, जिम, जिकोजी, क्या क्या बंदे के नाज नखरे होते हैं कि मौत ना आए, वो खुद फ़ैन्नहु मुलाकीकुम, तुम नहीं जाओगे मिलने, वो खुद आ जाएगी, सुम्म तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर गैब और शहादत को जानने वाले के सामने खड़े होगे, फ़युनब्बियुकुम बिमा कुन्तुम तअमलून, फिर वो तुमको बताएगा तुम क्या करते थे। उस वक्त नज़रें चुकाने उस वक्त नज़रें चुराने की कोशिश करोगे लेकिन नज़रें चुरा नहीं सकोगे, दुनिया से तुम्हारी आंखें बंद होंगी और आखिरत की सारी हकीकतें खुल जाएंगी। तीसरी बात कहा जा रहा है, कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन, कोई बात नहीं, काश के तुम इल्मे यकीन के साथ जान लेते, यानी मौत या क़यामत का इल्म दरअसल यकीनी इल्म है, तुम्हें काश इसका शौर होता। आप देखिए कि यकीन के तीन दर्जे हैं ना, इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन, हक्कुल यकीन। इल्मुल यकीन वो यकीन है जो इंसान को इल्म मालूमात की बुनियाद पे हासिल होता है। आप दूर से धुआं उठता देखें, आपका गुमान है कि वहाँ आग लगी होगी, हालांकि आपने भी आग नहीं देखी, ये पहला दर्जा होता है। आप उठते हैं, चल के वहाँ पहुँचते हैं, जब देखा तो आपको आग नज़र आ गई, या आइनुल यकीन है दूसरा दर्जा, कि आपने आग देख भी ली। लेकिन एक दर्जा इससे भी आ गया, शायद धोखा हो, फेक हो, आजकल तो कई ऐसे मतलब डेकोरेशन पीसीस में देखने में आग लगते हैं लेकिन वो ऐसी लाइट्स होती हैं। तीसरा दर्जा क्या, कि आप जाकर उसको छू लें, बात समझ गए। यकीन का दर्जा तजुर्बे से आता है, आंख भी धोखा खा लेती है कि ज़रूरी नहीं कि वो आग हो, आज आप देखिए हीटर हैं, आग का मंजर दिखता है लेकिन वो आग नहीं, तो वहाँ जाकर जब छुओगे फिर तुम्हें पता चलेगा हक़ुल यकीन क्या होता है। और वो कब होगा, लतरवुन्नल जहीम, तुम दोज़ख को देख कर रहोगे, सुम्म लतरवुन्नह आइनल यकीन, फिर तुम इसको आइनल यकीन के साथ देखोगे, फिर तुम्हें यकीन आएगा ये मिथ नहीं था, फिर तुम्हें यकीन आएगा कि जहन्नुम सच है। फज तहज्जुद की दुआ में अल्लाह के नबी मांगा करते थे और कहा करते थे, अल्लाह अंतल हक व नारु का हक व जन्नतु का हक, अल्लाह तू भी हक है, तेरी आग भी हक है, तेरी जन्नत भी हक है। लेकिन इतनी देर से जाकर यकीन किया तो क्या फ़ायदा, सुम्मलतुस्सलुन्ना यौम इज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन तुमसे ज़रूर पूछा जाएगा नेमतों के बारे में, उस दिन अल्लाह की तरफ से अता करदा एक एक नेमत के बारे में तुमसे जवाब तलबी होगी। बिल वहाँ आएंगे, अभी तो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं कि दुनिया में तुमने उसकी नेमतों से क्या फ़ायदे उठाए, क्या हकूक अदा किए, नेमतों को लेकर और ही फैल तो नहीं गए, कहाँ पहुँच गए, क्या पता चला कि इंसान का इस दुनिया का इल्म अभी अधूरा है। अपनी आँखों से जब जाकर देखेगा वहाँ फिर उसको समझ आएगा। और यकीन करिए पहली आयत अल हाक मुत्तकासुर, इतनी वसत है इस एक जुमले में कि इसको आप कह लीजिए कि दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है। और पीछे पढ़ चुके हैं लहवल हदीस सूरह लुक़मान में, अलहाकुम लहव से गफलत, हर वो शुगल जिसमें दिलचस्पी इंसान को अहम तरीन चीज़ से गाफिल कर दे। क्या आज अहम तरीन चीज़ से गाफिल हैं, अल्लाह से गाफिल हैं हम, मकसद हयात से गाफिल है, पर्पज़ ऑफ लाइफ भूल गया ना इस दुनिया में खोकर। और जब ये लफ्ज़ अल्हा की तरह आ जाता है जैसे यहाँ है अल्हाकुम, तो मानी के किसी लहव ने तुमको अपने अंदर इतना मशगूल कर दिया कि तुम्हें अब किसी और चीज़ का होश ही नहीं है जो इससे भी अहम तर है, तुम पर इसकी धुन सवार है, तुम इसकी फ़िक्र में, जिसको कहते हैं ना मुनहमिक को, मगन हो इस दुनिया में, नमाजों पे नमाजें जाती हैं मगन हो, नेकियों के मौके जाते हैं गाफिल हो। और जब से ये फ़ोन हाथों में आए इसने तो प्रैक्टिकली हमें मगन कर दिया, एक कमरे में बैठे चार लोग एक दूसरे से दूर और बाहर वालों से करीब है, एक गाड़ी में बैठे देख लीजिए तीन लोग, ड्राइवर तो मजबूर है बेचारा, बाकी सब के हाथों में फ़ोन है और वो खेल रहे हैं इससे। आज हमारा हाल ये कि साथ बैठों की खबर नहीं और दूर वालों के राज हमें पता है, एक स्नैपचैट होती है और पूरी दुनिया को पता लग जाता है आप आइसक्रीम खा रहे हैं, पहली दफ़ा खाई है ना इसलिए दिखा रहे हैं सबको, शर्म नहीं आती کتنا ندیدہ ہے انسان. ہو سکتا ہے دوسرا بیچارہ بھوکا ہو, اس کے گھر میں کھانا ہی نہیں پکا اور آپ گرم پیزے کی تصویر بھیجیں کہ دیکھو ہم پیزا کھا رہے ہیں. جو کبھی کبھی کھائے اس کو تو ایسے کرنا ہی چاہیے. کیا بننا چاہتے ہیں ہم؟ کئی گھروں میں اس وجہ سے لڑائیاں لگی ہوئی. آج فلاں کو دیکھا جنہوں نے کیا کھایا, انہوں نے دیکھے کیا پکایا, اور رات دن کے فرق سے تو بڑی امید ہوتی ہے کہ واقعی لڑائی پڑ جائے گھر میں. ندیدہ پن ہے یہ, شو بازی ہے, شدہ پن ہے, یہ انسانیت نہیں ہے. کبھی اپنی کوئی اچھی چیز شیئر کر دے انسان. اور حال یہ, وہ کہتے ہیں کہ پہلے کھانا لگا کر کہتے تھے آئیے مہمانی کھائیے, اور اب مہمان بیچارے کھانا دے کر آئیں تو کہتے ٹھہر جائیں ذرا اسنیپ لے لیں, تصویر لے لیں. کئی جگہ میں نے یہ ندیدہ پن دیکھا, تصویریں لے رہے ہوتے ہیں اور بیچارے مہمان کھڑے, ابھی ٹھہر جائیں ابھی ٹھہر جائیں. دلہن آ گئی, نہیں نہیں ابھی ایک مووی بن رہی ہے, ابھی اس کو نہیں آنے دیں گے اندر. کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم گھر گھر کھیل رہے ہیں, شو بازیوں میں آ گئے, نقلی کھیل, گڑیا گڈے کا کھیل کھیل رہے ہیں, ہم اصل مقصد سے غافل, اسی میں کھو گئے. تھیم میرجز اور پلانرز بن رہے ہیں اور شادیوں کے, اور خاص طور پہ جو چیز مجھے اب پتہ چلی, اللہ معاف کرے مجھے نہیں تھا یقین آنا اگر میں نے کسی بڑے مستند بندے سے نہ سنا ہوتا, کہ شادیوں کو تو آپ نے دیکھا ہی ہے بہت جگہ. اب ہمارے ملکوں میں جو موت کے اوپر خرافات شروع ہو گئی, دوجا تیجا چالیسواں برسیاں ہوٹلوں میں ہوتی ہیں, اور نرم گرم گدوں پہ بٹھا کر, اور جو اسٹیشنس لگتے ہیں چائے پانی کے, اور وہاں کسی کو سیڈ سانگ سنوائے جا رہے ہیں. واللہ ہی میں جھوٹ نہیں کہہ رہی آپ سے, یعنی کسی کے چہلم کی رسم تھی اور کسی ہوٹل میں پلان پروگرام تھا, آنے والے تیار تھے, یہ الگ بات ہے, سب نے براؤن میک اپ کیا ہوا تھا اور نیچرل لک دکھ رہی تھی, اور وائٹ صرف ڈائمنڈس پہنے ہوئے تھے, کہ یہ تو پہنتے ہیں. آج لوگ میت کے گھر جانے سے پہلے ڈائمنڈس پہنتے ہیں اور وائٹ چوڑیاں. چلو ٹھیک ہے, آپ سرخ نیلے پیلے کپڑے تو نہیں پہنے, لیکن چلیں کوئی ذرا ڈل تھیم لے لیتے ہیں. وہ میت پڑی ہے, لاش آپ کے سامنے, اور آپ اپنی انگوٹھیاں دکھا رہے ہیں لوگوں کو, اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی آخر. پھر لوگوں کو کہیں گے ہم تو گھر میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, میک اپ کیے ہوئے, لائٹ میک اپ, اور وہاں جا کر بیٹھے تو وہ جن کی بات بتا رہی ہوں کہ جو بھی پروگرام تھا تو سنگر آ گئی, سیڈ سانگ آ رہی ہیں. یہ کیا, یہ ان کو بڑے پسند تھے جانے والوں کو, واللہ ہی قوالیاں, یہ ان کی پسند کی قوالیاں. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اس سے بھی بڑا ظلم. آپ تو نہیں جانتے پاکستان میں بہت سارے لوگ, کراچی میں ایک بہت دو تین قبرستان ہے نا, ایک ذرا غریب علاقے میں, اندر کے جو علاقے ہوتے ہیں, لاہور میں بھی آپ نے سنے ہوں گے گڑی شاہو اور کچھ, اور کچھ بڑے بڑے ماشاء اللہ, جیسے آپ پی سی ایچ ایس میں جو ہے تو وہ فخر کرتے ہیں, وہاں سے گزری. اچھا جی, ہمارے بہت سارے لوگ ادھر دفن ہیں, تو بھائی یہ وی آئی پی قبریں ہیں. الحاکم التکاثر, اندر کیا ہے, قبروں کے اوپر تو بڑے پھول ہیں. ناروے میں جو ہمارا گھر ہے, گھر اور اسکول کے بیچ میں 5 منٹ کی ڈرائیو ہے, 3-4 منٹ کی کہہ لیجیے, تو بیچ میں قبرستان سے ہم گزرتے ہیں. یقین کریں عادت ہو گئی, اور میں آج تک میں نے اپنے آپ کو اس خیال سے مبرہ نہیں کیا کہ یہ قبرستان ہے. اوپر پھول کتبے, اور کیا حسین قبرستان ہے, یقین کریں اس کو دیکھ کے تو قبر کا خوف ہی نکل گیا. نیچرل بیوٹی الگ سے بات ہے, لیکن اندر کیا ہے, لوگ باہر سے سجاتے ہیں, قبروں کو اندر سے سجانے کی ضرورت ہے. آج لوگ اس پہ بھی فخر کرتے ہیں, اچھا وہاں دفن کیا, نہیں نہیں ہم نہیں وہاں دفن کرتے, ہمارے تو وہاں جائیں گے. قبروں پہ بھی ہم مقابلے کر رہے ہیں, اور کل قبروں کے, اور کسی کی بات سن کے ہنسیے کا نہیں پھر بتاؤں گی, قبر میں ایسی لگوایا انہوں نے میت کے لیے. جی دیکھیے, ہم دنیا میں نیکیاں کر لیجئے, قبر میں ٹھنڈک خود ہی آ جائے گی. یہ آج ہمارے ان نیچرل وے آف لیونگ کا نقصان ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, میت والے گھر میں لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے. کھانے پلاؤ زردے, ون ڈش آئٹم, دوسری آئٹم کیا ہو رہا ہے, میٹھے میں کیا, یہ عام باتیں ہو گئیں. اور یہ جو لفظ تکاثر ہے نا, یہ بھی ایک سمجھنے والی چیز ہے, کیونکہ کثرت کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے, یعنی آپ کے $100 ہیں, آپ کا دل کرتا ہے 500 ہو جائیں, 500 ہو جائیں گے تو آپ کا دل کرے گا 1000 ہو جائیں, یہ معنی. دوسرا کیا ہے کہ لوگ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کوشش کریں, کمپٹیشن, میرا جوڑا اس سے اچھا, میری گاڑی اس سے اچھی, میرا گھر اس سے بڑا. تو اس میں آپ دیکھیں نا, ورسٹ نیچر ہوگی نا. ایک ہے آپ خود ہی چاہ رہے ہیں زیادہ ہو, چلیے سنبھالیے گا, پھر سارا دن لگے رہیں اسی کے ساتھ. लेकिन जब उसमें तकाबुल और दूसरे का मुकाबला शुरू हो जाए, और तीसरी फिर इससे भी बदतरीन फॉर्म क्या होती है कि लोग एक दूसरे के मुकाबले में फिर फ़ख्र भी जताएं कि हमारे पास तुमसे ज़्यादा है। वो कहते हैं इफ़ यू हैव इट फ्रंट इट, है तो दिखाओ, फिर दिखाओ, शो ऑफ कराओ, लोगों को जलाओ। अल्लाह ने दिया जी, पहनेंगे बच्चियों की। ज़रा एक शादी को अपने जहन में लाइए, इस आयत को समझते रखते कि अल्हा को मुतकासुर का निशाना नहीं दिखती, और किस लिए जी, बच्चों के लिए। कई लोग जी सिर्फ इसलिए रहे हैं और कमा इसलिए रहे हैं कि अपने तीन बच्चों की शादी करके मरे। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो खर्चे में लगा देते हैं कि एक दफ़ा ये शादी ऐसी कर दो कैसी किसी की ना हो। तो काबुल छुपा छुपा के अपनी चीज़ें रखते हैं कि कल तक ये लीक ना हो जाए जोड़ा, कल तक ये डायमंड का सेट लीक ना हो जाए। और यकीन करें किसी ने अपना वाक्या सुनाया कि दूल्हे की माँ ने वलीमे पे पहनने के लिए जो सेट अपना डायमंड का रखा हुआ था छुपा के, बड़ा कीमती समझ के, वो शादी वाले दिन शायद लड़की वालों में से किसी ने वैसा पहना होगा, रातों रात ज्वेलर को बुला के अगले दिन दूसरा लेकर वलीमे पे पहन गई कि मैं वो पहनूं जो कल लड़की वालों ने पहना हुआ था। अल्लाह को मत तक असर बनेंगे क्या बुत हैं जिनको पूछना है, बेचना है अपने आप को हमने, हमारी क्या कीमत लगेगी, सोने चांदी की लगेगी, हमें निकाल देंगे लोग अंदर से, आप सोने चांदी से कीमती बन जाए। और आज तो इसका हाल इतना बढ़ गया है, ब्रांडेड ने और एक दूसरे से आगे बढ़ने ने मत मार दी औरतों की, सब जानते हैं, मैं ना कुछ कहूँ तो बेहतर है। अपने लिए पहनिए, अपने लिए ओढ़िए, अपने लिए घर बनाइए, गाड़ी रखिए, दूसरों को जलाने और दिखाने और जला कर खिला रहे हैं, दूसरा जले और आप खुश हो, दूसरा के हाय आहें निकलती रहे उनसे। आपकी शादियों में दूसरे कई बच्चों के माँ बाप आए होते हैं जिनके पास नहीं है रिसोर्सेज, वो आहें नहीं लेकर जाते, हाय हमारी बच्ची कभी कभी हो गई ना। और लड़कियाँ लोगों की और कीमतें बढ़ जाती हैं जब हम अपने बेटे को इससे भी बड़े घर में ब्याहेंगे। तो याद रखिए यही करते रह रहे हैं, इसीलिए तो फिर असल काम से दूर है। अल्लाह आपके मेरे दिल से दुनिया को निकाल दे। ये हुब्बे दुनिया को निकालने के लिए उम्रा करना पड़े, करिए, इसके लिए अल्लाह से नफिल पढ़ने पड़े, रातों को जागना पड़े, जागिए। अल्लाह आपको खाने पीने से नहीं रोकता, वो कॉन्सेप्ट आप सारे अब समझ चुके हैं। आराइश भी जायज़ है, ज़िबाइश भी जायज़ है, नुमाइश जायज़ नहीं है। आप लोगों का अगर कोई कॉन्सेप्ट रह गया तो वो बाद में आगे जाके पूछ लीजिएगा, आपको बताएंगे। अल्लाह मना नहीं करता, लेकिन अल्लाह दूसरों को जलाने और दिखाने के लिए पहनने से मना करता है। हदीस में आता है उसको, उस औरत को खुजली का लिबास पहनाया जाएगा क़यामत के दिन। खुजली ख़ारिश होती है ना ऐसे, अब मैं ख़ारिश करूँ तो आप सब मुझे देखेंगे ना, तो ख्वाहिश तो यही होती है ना लोग देखें। आज देखे पेंटें फाड़ फाड़ के घुटनों से दिखा रहे हैं कि मैं देखो फटी हुई पेंटें, गरीब दिल करे उनको एक एक दे दें, वो दिखा रहे हैं आपको, क्या करें मजबूरी। वैसे नहीं आपने हमें देखा, अब हमें फटे हुए कपड़ों में देखें, कुछ तो दिखे, कुछ तो दिखे, ये शौहर है। अब वो दुनिया में किसको वो पहनाया जाएगा वहाँ, जो दुनिया में इसलिए लिबास पहनती है कि लोग मुझे देखें, शो ऑफ का जोड़ा। और कई लोग मुझे कहते हैं मैं समझ ही नहीं आता, फिर पहने और दिखाएं ना, ये क्या तुक है। तो आज टॉपिक वो नहीं है, इसलिए इसको ज़रा सा साइड पे कर देते हैं। लेकिन बहरहाल अपने लिए कीजिए, शुक्राने के लिए कीजिए। आपके से अच्छे कपड़े पहने, क्यों बुत बना के हैंग किया हुआ है, बेचारों को कितने साल से फांसी पे चढ़ाया, साल में एक दफ़ा उतरता है, 15 मिनट एक घंटा पहन के फिर चढ़ा देते हैं उसको, हैंग ही किया हुआ है ना हमने, क्रॉस ही है ना हमारे हैंगर, ये हैंगर क्या है अब आप खुद ही जानते हैं, मैं तो नहीं कुछ कहती। हर वो चीज़ जो आपने एक सीज़न में 10-15 बार नहीं पहनी, आपकी नहीं है, दे दीजिए किसी को, उसका नसीब। और वो कई लोग कहते हैं सीज़न गुजर गया जोड़े की बारी नहीं आई, कैसे बारी आए, 200 लॉन के जोड़े आपने वार्डरोब में रखे हुए हैं, 50 बरस एक और उसके पत हो सकते हैं, 80 जोड़े जूतियों के हो सकते हैं, याद कैसे रखता है, दुकान की तरह बार लिख के लगाया हुआ ये किस रंग का है, तो अंदर से लाता कौन है, मियाँ लाता बेचारा, खुद तो अंदर घुसना पड़ता है, बिलीव नहीं, आप तो जा ही नहीं सकती उस खुड्डे में जहाँ इतने जूतों के डब्बे रखे हुए, तो खिदमत के लिए अल्लाह ने खादिम दिए हमें, किधर चले गए हम। अल्लाह हमारे दिलों से इनका, और ये जो नेमतों का सवाल है ये बड़ा मार खाएगा बंदा, जिस लिबास बर्तन कपड़े खाने पीने में इस्तेमाल कर लिया, अच्छे काम कर लिए, उसका हिसाब नहीं है। हमारे बर्तन कोई 10-10 साल उसको हाथ तो लगा कर देखे, ये क्रिस्टल है, ख़राब हो जाएगा, ये तो मैं लंदन से लाई थी, मैं तो नहीं पहन इसमें पहने खाने दूंगी, ये तो बेटी के ससुराल के लिए रखा हुआ है, वो कब आएंगे और कब जाएंगे। बर्तन है और लोगों को कागज़ के बर्तनों में खिलाते हैं, इससे भी ज़्यादा बेइज्जती कोई अपने मेहमान की कर सकता। आपका पूरा किचन, आपकी पूरा डाइनिंग रूम भरा हुआ है बर्तनों से, मेहमानों को आप कागज़ के बर्तन दे रहे हैं कि खबरदार उधर ना देखेगा ये कागज़ के बर्तन, शर्म से सर झुक जाए, बिलीव मी, सिर्फ दिखाने के लिए ना। چیز ہے استعمال کریں اٹس اوکے. آپ کے گھر میں 6 گاڑیاں اور 6 لوگ استعمال کریں اٹس اوکے, لیکن دوسروں کے دل پہ چلانے کے لیے گاڑیاں 2 بڑی رکھی ہوئی ہیں تو نقصان ہے. سڑک پہ چلائیے, لوگوں کے دلوں پہ نہ چلائیے. چیز استعمال کیجیے. آپ نے فرمایا ابن آدم کے لیے 3 ہی چیزیں ہیں, کھا لیا اچھی بات انجوائے کر لیا گندگی بن کے ختم, پہن لیا پرانا ہو گیا چلو اچھا, یا پھر اپنے ہاتھ سے آگے دے دیں, باقی سب وارثوں کا پھر حساب دینے پڑیں گے. اور ان چیزوں کا تو حساب بڑا سخت ہوگا جس کو ہم نے قیدی بنا کے گھروں میں رکھا ہوا ہے. اور بلیو میں ہمارے ایک ایک گھر میں سے پورے پورے اسٹور کا سامان نکلا ہے. ایک چھوٹی سی شاپ لگ جائے ڈیکوریشن پیسز کی اگر لوگ ہمارے ڈیکوریشن پیسوں کو بیچنا شروع کریں. اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب دل بدلتے ہیں نا تو پھر عورتیں وہ چیزیں لا لا کے رکھتی ہیں, اس کو بیچیں پیسے ڈال لیں فلاں پروجیکٹ میں. اس میں ہزاروں کی چیزیں ہمارے گھروں میں پڑی بیکار, ایک لے آئے اگلے دن دوسری اچھی لگی. اور نعمتوں کے حساب پہ تو وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے. جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر آئے اور ہم نے آپ کو تازہ کھجوریں کھلائیں اور پانی پلایا. صرف 2 چیزیں, ہم کہتے ہیں کھجور پانی. جی, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے جن کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. مسند احمد کی روایت. اور ابو حریرہ کی روایت سن کر تو نہ رونا آئے تو رونے کی نیت کر لیجئے. ابو بکر اور عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, کہنے لگے چلے ابو الحسم کے باغ میں جاتے ہیں, انصاری تھے, ان کے پاس گئے وہاں بیٹھ گئے. اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ 3 دن کے بھوکے تھے اس دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو بھی ساتھ تھے انہوں نے لا کر ایک کھجوروں کا خوشہ رکھا. آپ نے کہا کہ مطلب تم نے خود کھجوریں کیوں نہ توڑ دیے, نہیں پورا گچھا ہی لے آئے ہو تو توڑ کے لاتے. کہنے لگا میں چاہ رہا تھا کہ آپ خود مرضی سے کھائیں, چوز کریں اور کھائیں. پھر کھجوریں کھائیں, پھر ٹھنڈا پانی پیا. جب فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جس کے بارے میں قیامت کے دن تمہاری جواب دہی ہوگی. اللہ کے نبی کیا نعمت؟ کہا ٹھنڈا سایہ, ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی ٹھنڈی کھجوریں. یہ مسلم میں بھی روایت ہے. اور ایک جگہ تو یہاں تک آتا ہے کہ اتنے دن کے بھوکے تھے اور عمر نے ایک انگور منہ میں ڈالا اور اللہ کے نبی نے کہا عمر سوچ کے کھانا اس کا حساب ہوگا, تو عمر نے رکھ دیا. اللہ کے نبی اتنے دن بعد مل رہا ہے پھر بھی حساب ہوگا, کہا حساب تو ہوگا, عذاب ہونا اور بات ہے, حساب اور ہے, کاؤنٹ تو ہوگا. آپ کاؤنٹر پہ آتے ہیں خریدتے ہیں, پیسے تو دینے پڑتے ہیں, جا کے پھینک دیں آپ کی مرضی, حساب تو ہوگا. تو جیسے دنیا میں مفت میں نہیں ملتا وہاں بھی مفت نہیں ملے گا. اور حقیقت ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. سورۃ ابراہیم 34 میں ہم پڑھ چکے ہیں. دعا کیجیے اللہ ہماری نعمتوں کا حساب نہ لے, دنیا میں ہم اپنا حساب خود لے لیں. جس جس نعمت کو استعمال کیا ہوگا, اچھے راستوں میں لگایا ہوگا, اس کا حساب نہیں ہوگا, سارا حساب اس کا. سب سے آخری جملہ بولتا ہوں کہ جن نعمتوں کو پا کر ناراض کیا ہوگا پھر رب کو, جس دن زیادہ نعمتیں اس دن زیادہ نافرمانی, وہ تو پھر عذاب ہوگا. وہ حساب پہ نہیں بات رکے گی, پھر اس کا عذاب ہوگا, کیونکہ یہ بہت بڑی انسان کی ناشکری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. تلاوت کریں سب مل کے سورت کے. آج اپنے گھر پہ نظر ڈالیں گے اس پہ. 3 لوگ شیئر, چلیں آپ 4 روز ہیں نا, ہر رو میں سے ایک بندہ شیئر کرے پھر آگے چلتے ہیں. اس پوری رو میں سے کسی جگہ بھی ہاتھ کھڑا کر لیجئے کہ ان 2 صورتوں میں سے آپ کو کیا سمجھ آئی. جی شاہین, آپ نے کیا سیکھا؟ ہر وہ شغل جس پہ جس میں دل یعنی ہر چیز میں کھوتے ہوئے سوچئے کہ کیا یہ ورتھ اٹ ہے کہ میں اس میں آ جاؤں. دیکھیے چیز خریدتے وقت ایک دفعہ تو سوچتا ہی ہے نا عقل مند بندہ کہ از اٹ ورتھ اٹ, 100 دے رہی ہوں تو کیا یہ ورتھ اٹ ہے. نہ سمجھ تو چاہے 1000 کی بھی لے لینی, لیکن عقل مند تو سمجھتا ہے نا. تو کسی بھی چیز پہ اپنا وقت لگائیں نا, سوچیں ڈز اٹ ورتھ, क्या इस वक्त की ये वर्थ है, इस कीमत है, तो इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चेक हो जाएगा इन चीज़ों का। जी इधर से जी।
कसरत और बुख्ताब का असल मानी आज समझ में आया कि कसरत क्या होती है और कितना उसका
बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। जी आप
कुछ मिलने के बाद अगर छीन ले भी जाएगी तो फिर भी शुक्र अदा करना।
शुक्र हर हाल में, मिल जाए तो, ना मिले तो, मिल के छिन जाए तो भी। जी इधर से कोई। जी आप
अपने आप को सोने चांदी से ज़्यादा कीमती बनाना,
यानी खुद को सोने चांदी से कीमती बनाना है। हमारी वैल्यू इन चीज़ों से नहीं है। आपके सह आप पहन लें, आप खा लें, पी लें, ख़त्म। किसी को दिखाना, किसी को बताना, किसी की नज़रों में जचने के लिए या इज्जत का मेयार है, तो दैट मीन कि आपके अपने अंदर कुछ नहीं है। जी पीछे। जी आप
नेकियों को सोच समझ के करना चाहिए, ऐसा ना हो कि बदले वाले दिन हमारी नेकियां का
वजन ना हो, खोटी नेकियां ना हो। बिल्कुल सही है। चलिए अब अगली सूरत पे जाते हैं जो वाकई पूरे दीन का खुलासा है, और इस एक सूरत को हम अगले जो एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम कोर्स है उसमें बहुत दफ़ा टच करेंगे, इसलिए आज मैं चंद इशारे देकर आगे गुजर जाऊंगी। और इसके ऊपर अलग से अल्हम्दुलिल्लाह कई बार लेक्चर्स हो चुके हैं। टाइम मैनेजमेंट सीरीज़ जो आप नूरुल्ला नूर में पढ़ेंगे पूरी सूरत असर पे ही बेस्ड है, जो कई घंटों पे मुहित है, लेकिन इस वक्त इस सूरत में से हम लेते हैं अपने लिए पॉइंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत असर आयत 103, सॉरी सूरत नंबर 103, 103 है। तीन आयतें, ओनली थ्री वर्सेस, मुख्तसर तरीन सूरत, मक्की सूरत है, दो पैराग्राफ है, यानी है तीन आयतों में भी दो टॉपिक हैं। जी बिल्कुल। कैसे? आयत 1 और 2 का टॉपिक क्या है? जल्द अज जल्द इस्लाम ले आओ वरना खसारे में मुबतला हो जाओगे। और आयत नंबर 3, ईमान, अमल साले, तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र से ही इंसान खसारे से बच सकता है। पूरी सूरत का बुनियादी थीम जिंदगी की कदर पहचानो। ये सूरत भी बिल्कुल इब्तदा में 3 सालों के अंदर नाजिल हुई। मुख्तसर सूरत, पैगाम बहुत बड़ा। इस सूरत के बारे में बाज़ असहाब कहा करते थे कि अल्लाह ताला सिर्फ सूरत असर नाजिल कर देते तो पूरे कुरान में जो कुछ बयान किया है वो सब कुछ उसमें आ जाता। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह इस सूरत के बारे में कहते हैं, लौ लम युनज़ल गैरा हाज़िहि सूरत लकफ़तिन नास। वही बात है जो भी कही है कि अगर अल्लाह इस सूरत के अलावा कुछ नाजिल ना करता तब भी लोगों की हिदायत के लिए यही सूरत काफ़ी थी। ये रूहुल मानी में आप पढ़ सकते हैं जुमला। सूरत का पीछे आगे से रब देखिएगा, पीछे तकासुर में अच्छे अमाल, नेमतों पर शुक्र, आखरत पर पुख्ता यकीन, कनात और एहसास जवाबदही था, बुरे अमाल की वजाहत थी। यहाँ सूरत असर में बताया जा रहा है कि अच्छे अमल करने से पहले ईमान लाना लाजमी है, और अच्छे अमल करके तवासी बिल हक भी लाजमी है। और इस सूरत में इंसान को करने के 4 काम दिए गए हैं कि जिसके बाद बैंक करप्सी से बच सकते हैं, लॉस प्रॉफिट में बदल जाएगा, अगर ये सूरत आज हमें समझ आ गई, और अल्लाह करे कि समझ आ जाए। सूरत का नाम असर, पहली ही आयत, निचोड़ने को कहते हैं। ये जो सलातुल असर है ना, इसको भी इसी से कहते हैं कि ये दिन का निचोड़ होता है, बस दिन जा रहा है और रात आ रही है, तो गोया के ज़माने को भी यहाँ इस अंदाज से लिया गया। जामे और मुख्तसर कलाम का बेनज़ीर नमूना ये सूरत है, दो टोक बात है। फलाह का रास्ता क्या है और तबाही और बर्बादी का रास्ता क्या है। अब्दुल्ला बिन हिसन कहते हैं कि नबी सल्लम के साथियों में से जब 2 आदमी एक दूसरे से मिलते तो उस वक्त तक जुदा ना होते जब तक एक दूसरे को सूरत असर ना सुना लेते। ये तबरानी की रिवायत है, तो कोई बात तो होगी। आइए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, दर हकीकत इंसान बड़े खसारे में है। कुछ भी नहीं हुआ सुनकर आपको, कोई कि आपका लॉस हो गया, नुकसान हो गया, एकदम अलर्ट होते हैं। 1400 साल से ये आयत पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन खौफ ही कोई नहीं है दिल में आता कि हम नुकसान में, خسارے میں ہے، تم تباہی کی طرف ہو، اور حقیقت ہے کہ انسان کا ہر دن خسارے میں ہے، ہر دن نقصان کی طرف جا رہا ہے، ہر صبح جو آئی اور کل چلی گئی، رات کو ختم ہو گئی، وہ چلی گئی۔ آپ کا میرا ہر دن مجھے موت کے قریب کر رہا ہے، ہر سانس میری زندگی میں سے ایک سانس کم کر رہی ہے۔ یہ ہے لفی خسر۔ بچپن گیا، جوانی آئی، جوانی جا کے بڑھاپا آ رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، یعنی اس حقیقت پر زمانہ گواہ ہے یا پوری تاریخ انسانی گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ لفظ نقصان سن کر ایک دم انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن یہاں لفظ نقصان نہیں ہے، وہ بھی عربی کا لفظ ہے، نقصہ، ینقص، تنقص۔ نقص کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز تھی، پھر آہستہ آہستہ کم ہو گئی، کچھ بچ گیا، وہ نقصان ہے۔ دیکھیں نا، کاروبار میں نقصان بھی ہوتا ہے، پھر نفع بھی ہو جاتا ہے۔ آج کچھ کم ہو گیا، کل زیادہ ہوگا۔ یہاں لفظ خسرہ ہے، خسران مبین کا بھی لفظ آتا ہے۔ تو خسارہ، بس آپ کہہ لیجئے بینکرپسی، دیٹس اٹ، نتھنگ لیفٹ، ایوری تھنگ ہیڈ گون، سب چلا گیا۔ ہاں، مگر اس نقصان کو نفع میں بدلنا ہے تو چار کام کرنے پڑیں گے۔ خلاصہ کر لیجئے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لاؤ، اللہ کو ایک مانو، دل دماغ کے اندر اللہ کی محبت، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل، صالح عمل، اچھے کام کرو، اور ہر وہ کام اچھا ہے جس کی دو شرائط ہیں۔ نمبر ایک، للہیت ہو، مراد اخلاص، اور دوسری شرط عمل صالح کی، رسول کے طریقے پہ، اسوہ حسنہ کے مطابق۔ پھر بول دیتی ہوں، عمل صالح کی دو شرائط ہیں، اللہ کے لیے ہو اور طریقہ محمدی ہو، اور اس کی ڈیٹیلز ہیں، تو وہ ایک لیکچر بھی تھا اور آپ پڑھ بھی چکے ہیں، آیت 177 سورہ بقرہ، آیت بر لیس البر، اس میں اس کی بہت ڈیٹیل ہے، وہاں سے سن لیں۔ یعنی اچھے کام کرو۔ تیسری بات، وتواصو بالحق، انہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت دی۔ یہ جو تواسی میں اور تواصو میں واو ہے نا، یہ وہی بات ہے جو پیچھے ابھی سمجھ گئے ہیں، تکاثر میں، ایک دوسرے کو، میوچول کا معنی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرو، وتواصو بالصبر، اور صبر کی تلقین کرو۔ اب یہاں سے سمجھیے گا، ان شرائط میں پہلی اور بنیادی شرط انسان کے لیے کیا، ایمان لاؤ، اور ایمان میں ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، اور ایمان بالآخرت سمیت تمام جزیات ہیں ایمان کی، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 63 برانچز ہیں، اور حیا بشعبۃ من الایمان، چھوٹی سی، سب سے چھوٹی کیا ہے، کہ راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹا دو۔ ٹھیک ہے، تو پہلی شرط کیا ہے، کہ انسان اس کائنات کے رازوں کو مانے، غیب پر ایمان لائے، شعور حاصل کرے، اللہ کو مانے، یہ نہ کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، بلکہ ان گاڈ وی ٹرسٹ، پھر اس کی تصدیق کرے زبان سے، اقرار باللسان، اور دل سے مانے، تصدیق بالقلب۔ پہلی چیز، چلیے رکھیے، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نیکیاں کرو، اچھے کام کرو، گڈ ڈیڈس کرو، کوئی بھی کرے قبول ہے، نہیں، آمنو کی شرط ہے گڈ ڈیڈس کے لیے، اس کے کرائیٹیرین پہ آپ ان لوگوں کی نیکیاں جو ایمان نہیں لاتے اور اچھے کام کرتے ہیں۔ سورہ فرقان، سورہ نور یاد کیجئے، حبام ممبسا، اللہ بکھری ہوئی راکھ کی طرح یا سراب کی طرح سے لوگوں کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ کل ہم نے یہ بات سمجھی تھی نا، کل رات کو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے پچھلی صورتوں پہ، کہ لیو رو اعمالہم، کبھی شاید ہی آپ نے سوچا ہو کہ مومن کو دنیا میں اس کی گناہ دکھ جاتے ہیں، بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں کی صورت میں، اور کافر کو اس کی نیکیاں دنیا میں دکھتی ہیں، اسی لیے تو اتنی پیاری زندگی ہے۔ مومن کے نیکیاں ادھر دکھیں گی، کافر کے گناہ ادھر دکھیں گے، کیا بات ہے جی، کبھی اس پہ غور کرے تو انسان ہل کے رہ جائے۔ جب بیماری آئے اس کو نہ دیکھیں، پیچھے دیکھیں یہ کون سا گناہ لیے رہا ہوا، معلّہ ہو رہا، اور بچہ تنگ کرے تو دیکھے میرا کیا گناہ، ماں صابقم مصیبت اللہ بھی ماں کسبت عیدی کو۔ تو لہٰذا ایمان شرط ہے، پہلے ایمان لائیے، پھر نمازیں پڑھائیں، پھر روزے رکھوائیں۔ پھر دوسری چیز کیا ہے، عامل الصالحات، ایمان لانے کے بعد شرط کہ ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرو، اللہ پر ایمان رکھو، اس کے عمل اور کردار سے ثابت ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، شب و روز کمر بستہ ہو جائے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے۔ चलिए यहाँ एक कॉमन लगाइए और रुकिए। हम ट्रेडिशनल मुस्लिम्स की बात करेंगे। आज के मुस्लिम ने बस इसके ऊपर अपने आप को एक फुल स्टॉप दे दिया, बस ईमान लाकर अमल सालेह करें। बहुत सारे लोगों का आज हाल क्या है कि द क्लाइमेक्स ऑफ टू बी रिलीजियस इज नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। एम आई राइट और रॉन्ग? सौमो सलात की पाबंद बच्ची, दाढ़ी वाले लड़का, बा हिजाब या बा निकाब वाली बच्ची, बस हमारा दीन इस पे रुक गया। बरेसगीर पाक को हिंद का कोई और नेक होता है तो फ़र्ज के साथ वो सुन्नतें, फिर नफल, फिर 5 से 7 नमाजें, तहज्जुद गुजार, फिर हज के साथ उमरे शुरू होते हैं। इससे हम समझते हैं दिस इज़ द क्लाइमेक्स ऑफ रिलीजन, हालांकि यहाँ लिखिए यहाँ आधा दीन पूरा होता है। ये असल में सूरत का थीम, जो आज समझ गए तो बाकी बातें तो बहुत आसान है अल्लाह के हुक्म से। यहाँ इंसान का इनफरादी दीन पूरा होता है। यस, दिस इज़ योर पर्सनल लेवल ऑफ टू बी रिलीजियस। द मोस्ट रिलीजियस यू कैन बी, फराइज, सुन्नतें, नफिल, अल्हम्दुलिल्लाह, एज मच एज यू कैन डू। लेकिन आधा दीन जो इज्तमाई दीन है वो इसके बाद है व तवासो बिल हक की व तवासो बिल सब्र। ये है इज्तमाई, ये है वो बात, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। बात समझ गए? जब तक एक मुसलमान खुद नेक बनने के बाद दूसरों को नेक बनाने की कोशिश नहीं करेगा और उस रास्ते में जिद्दोजहद वलादियाति दबहा नहीं करेगा, खसारे से नहीं बचेगा। ये आज हमारी, इस वक्त हमारे प्रॉब्लम्स की ये रीज़न है जो हम पे क्लेमिटीज़ और औलादों के गम और मसले मसाइल। इस वक्त ये तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र छुटा हुआ है, आधा दीद है। मैं इसको ऐसे समझती हूँ कि जैसे एक बच्चे को 4 सवाल करने थे पेपर में और वो सिर्फ अटैम्प्ट ही 2 करके आया, हाउ कैन ही विल टेक फुल मार्क्स? और 2 में पूरे भी ले लेगा फिर भी पासिंग नहीं आएंगे क्योंकि वो 3 में पूरे करने से आते हैं। समझ गए? आज हमारी तो डिक्शनरियों में तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र नहीं है। हम कहते हैं ये तबलीगी जमात का काम है, ये वो न्यू मुस्लिम्स है ना दावा ग्रुप्स उनका काम है, और ये इस्लामी जमात का काम है, चंद फोरम्स हैं जो दावा कर रहे हैं, दैट्स इट। और हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। एक सिस्टर की बात भूलती नहीं, शायद 20 बार मेरे मुंह से निकली है कि नमाजें हम पढ़ते, रोज़े हम रखते, अब आप हमें और क्या चाहती हैं, अब और हम क्या नेकियां करें? लोगों के कॉन्सेप्ट में ही ये दावा नहीं है, तभी तो ये मुल्क बेचारे तरस रहे हैं। ये हमारी शक्लें देख रहे हैं लोग गुस्से में, तभी हमारी किताबें फाड़ते हैं, गुस्से में हमारे नबी की शक्लें बिगाड़ते हैं कि आप लोगों ने उनकी चीज़ नहीं उनको दी। तो तवासी बिल हक ये दीन का क्लाइमैक्स है, और असल बात यह है कि इसके बाद फिर दीन बुरा होता है। हक़ को कबूल किए, इसको अमली ज़िंदगी में लाए, अब इसकी तबलीग करो, इसकी नशर इशात करो, इसको फैलाओ, इसके लिए तुम्हारे घर खुल जाएं, तुम्हारे माल खुल जाएं, तुम्हारे ख़जानों की चाबियां खुल जाएं इस काम को फैलाने के लिए कि तुम दुनिया को इस किताब से, इस दीन से जोड़ दो। हाँ, ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, तो फिर तवासी बिल हक के साथ तवासी बिल सब्र। आप एक बच्चे को भी कह देना कैंडी ना खाओ तो वो भी आगे से रिएक्ट करेगा। सिगरेट पीने वाले को आपके सिगरेट ना पियो तो वो यूं घूरेगा। 10 नेकियां लोग आपके कहने पे कर लेंगे, एक गुना छोड़ने पे आप कहेंगे ना वो माइंड करेंगे, तो ये भेड़ों के छज्जे में हाथ डलता है। इसलिए नहीं लोग करते, कहते कौन बुरा बने, हम क्यों अपने टर्म्स ख़राब करें? वो सबको पता है करना पड़ेगा, मुझे सारे बुरे कह दें मैंने फिर भी करना है, क्योंकि मेरा दीन इसके बगैर पूरा नहीं होता। तो लिहाजा अपने इर्द गिर्द वालों, रिश्तेदार, दोस्तों, साथियों को अच्छे तरीके से इसकी दावत देनी है। और लुकमान सूरत 17 में लुकमान ने अपने बेटे को क्या कहा था, बच्चे को, अर्ली टीनेजर, या बुनै अक़िमिस सलाह, नमाज पढ़ो, बस अब रोज़े रखो नहीं, वामुर बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म दो। बच्चों को कहा जा रहा है सिखाओ, और वनहा अनिल मुनकर, अपने अगर हमारे बच्चों ने स्कूलों में अपने दोस्तों की बुराइयां ख़त्म की होती, वल्ला ही मैं आपको कहूँ कि जितनी जल्दी गैर मुस्लिम बच्चा दीन सच्चा एक्सेप्ट करता, बड़े नहीं करते। सिर्फ अगर हमारे बच्चे चलते फिरते दाई होते, उनके दिल उबल रहे होते उस दीन के लिए, इस उम्मत का और इस पूरी नस्ल का मुस्तकबिल ही बदल चुका होता। और ये याद रखिए, ये चेंज आनी बच्चों से ही है, टीनेजर से तो शुरू हो गया काम। बड़े तो स्टबन होते हैं, वो नहीं सुनते आपकी बात, जंग सुनते हैं, اور بس بر علامہ صاحب پھر اس پہ جو تکلیف آئے گی اس پہ صبر کرو. تو یاد رکھیے حق کے راستے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آزمائش اور ابتلا کا راستہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی نا کہ یہ شہادت گہِ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اپنی نیکیاں بہت آسان ہیں. اٹس ویری ایزی. آپ گھر بیٹھ کے 500 دانے کی تسبیح لے کر آپ دن بھر ذکر کرتے رہیں, نمازوں کے ساتھ نفل سنتیں پڑھیں, بٹ مشکل کیا ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندھیروں کو دور کریں. یہ ہے ففیرو اللہ, یہ ہے آج کے دور کی کرنٹ نیکی آپ کی میری جو قیامت کے دن فمن ثقلت موازینہ میں جائے گی کہ معاشرے کے اندھیرے دور کرو. اور وہ حدیث یاد ہے جبرائیل کو اللہ نے کہا کہ فلاں بستی کو ہلاک کر دو, بہت غلط کام ہو رہا ہے. کہا اللہ ایک بندہ ہے وہاں, اس نے تو ایک پلک جھپکتے میں بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی. کہا اس کو بھی پہلے پکڑو. کیوں؟ کہ لوگوں کو غلط کام کرتا دیکھتا تھا اور اس کے ماتھے پہ بل نہیں آتا. اور بنی اسرائیل کے علماء میں سب سے پہلی خرابی کیا ہے, اس کے اوپر تو میں ضرور چند سیکنڈ بات کروں گی. پہلی خرابی بنی اسرائیل کے علماء میں کیا آئی؟ کسی کو برائی سے روکتے, دیکھتے برا کام کرے والے نہیں کرو, لوگ نہ رکتے, اگلے دن خود بھی اس میں شامل ہو جاتے. آج ہم لوگ یہ کرتے ہیں, نکاح پڑھانے گئے اب بیٹھنا ہے جی, اب کیا کریں, شادی میں بلایا کھانا تو کھانا پڑے گا, اب یہ کیا ہو رہا ہے, منع نہیں ہوتے لوگ کیا کریں. یعنی آج ہم مسلمانوں نے ایکسیپٹ کر لیا, ایکسیپٹ کر لیا ہم نے, کیونکہ پہلے ایکسپیکٹڈ تھا اب ایکسیپٹڈ ہے کہ یہ شادیوں میں تو یہ کچھ ہو گئی. بچے نہیں مانتے, لڑکی کا بھائی نہیں مانتا, لڑکے کی ماں نہیں مانتی, بس سارے مجبور آپ ایسے وقتوں پہ ہوتے ہیں, دل اندر سے اپنا نہیں مانتا. تو یاد رکھیے برائی میں شیطان بن کر خاموش آ جانا, اور صرف رشتے بچا جانا, صرف خاندان بچانا, دوست کیا کہیں گے, اللہ کے ساتھ تعلق توڑ کر آتے ہیں. اللہ آپ کو مجھے اس کی ہدایت دے. اس صورت کا حق ادا نہیں ہوا, لیکن انشاءاللہ اس کے ساتھ کوئی ایک ایسا لیکچر ہم اس پہ جوڑ دیں گے کہ جس میں آپ اس کانسیپٹ کو سیکھیں گے, اور کسی دن ہو سکا تو میں اس کو الگ سے بھی الیبوریٹ کروں گی. لیکن اپنے لیے ضرور سوچئے گا کہ میری زندگی کدھر گزر رہی ہے. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ امر بالمعروف نہیں انل منکر نکال دیں, پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ بے کیف نمازیں ہیں اور بے ربط سجدے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آگے چلتے ہیں. میں چاہ رہی ہوں کہ آج کا گول جب ہم پورا کر لیں, آپ کو بریک اینڈ پہ ملے گی, ڈونٹ وری. اوکے, سورت ہمزہ 104 نمبر سورت ہے, 9 آیتیں ہیں, 2 پیراگراف ہیں, مکی سورت ہے, 2 حصے. پہلا 1-5, مال سے محبت کرنے والا بد اخلاق اور بخیل شخص یہ نہ سمجھے کہ اس کے مال نے ہمیشہ رہنا ہے. اور آیت 6-9, دنیا پرستی سے بچو, آخرت پر ایمان لاؤ ورنہ دوزخ میں داخل کیے جاؤ گے. پوری سورت کا تھیم کیا ہے؟ مرکزی خیال بد اخلاق, زر پرست اور بخیل روز قیامت دوزخ میں جائیں گے. ان کو اللہ پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. یہ سورت بھی مکہ کے دوسرے دور میں یعنی 4-5 نبوی میں نازل ہوئی تھی, جب امیہ بن خلف جیسی قریشی کے عادت کے اخلاقی اور معاشی رویے زیر بحث تھے. یعنی جب لیڈر بد زبان ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, یہ مراد ہے. اور آخرت کو پیچھے ڈال دیں تو انسان پرواہ بھی نہیں کرتا. پچھلی سورت اثر تھی, آمنوا اور عملوا الصالحات اور تواصب الحق اور تواصب صبر نہ کرنے والوں کو خسارے کی نوی تھی. اس صورت میں ہمزہ میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ایک بد اخلاق اور بخیل لیڈر کا انجام ہے. یعنی برا لیڈر کس انجام کا دوچار ہوتا ہے؟ اور لفظ ہمزہ ہمزہ سے عیب لگانے والا نکتہ چین, اور لومزہ منہ پر برائی کرنے والا عیب جو حذف کرنے والا. اللہ تعالی ہم سب کو بچا کر رکھے ایسے برے کردار سے. یعنی آپ کہہ لیں کہ اخلاقی طور پہ ایک انسان کو لٹ ڈاؤن کرنے والی یہ صورت ہے, کیسے لوگوں کا کیا حال ہے. اور اس صورت کو اگر آپ پڑھیں نا تو واقعی معاشرے کا بدترین کردار سمجھ آتا ہے. خاص طور پہ جس معاشرے میں دولت کی کثرت ہو جاتی ہے نا, تو لوگ دوسروں کے اوپر کس طرح باتیں چھیڑتے ہیں, یہ صورت آپ کو وہی چیز بتائے گی. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورت ہمزہ वही लुल्ली कुल्ली हूँ मज़ा तिल्लु मज़ा। बड़ी ख़राबी है हर उस शख्स के लिए जो लोगों के ऐब चुनता रहता और ताने देता रहता है। हो मज़ा और लू मज़ा मानी के एतबार से बहुत करीब लफ्ज़ हैं। रूबरू जब मुंह पे कोई आके ताने दे तो हो मज़ा, और पुश्त पीछे बैक बाइटिंग करे तो लू मज़ा। और हर चुगली खाने वाले, दोस्तों में जुदाई डालने वाले और तफरका डालने वाले और बेकसूर और बेऐब इंसानों में नक्स लगाने वाले को हुमज़ा और लुमज़ा कहते हैं। चलिए देख लें पहले आगे। अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददह, जो माल जमा करता रहा और इसको गिनता रहा। किरदार जहन में लाइएगा, इन पे बात होगी। मुंह पे लोगों को ताने देता है, पीछे से बैक बाइटिंग करता है और माल से इतनी मोहब्बत के जमा कर कर के उसको गिनता रहता है। यखसबु अन्ना मालहु अखलदह, वो समझता है कि इसका माल इसे हमेशा बाकी रखेगा। नोट करिएगा जुमला, ये नहीं कि माल बाकी रहेगा, अखलदह, फर्क गलत ना कीजिए तर्जमा। क्या ये समझता है कि इसका माल इसे हमेशा बाकी रखेगा, यानी इतना माल आ गया कि दुनिया के किसी हॉस्पिटल में जाकर ज़िंदगी ख़रीद लेंगे और हार्ट अटैक हो भी जाएगा तो बच जाएंगे, ये मुराद है। यानी माल से ज़िंदगी नहीं मिलती, इसके माल ने इसको हमेशा ज़िंदा रखना है और दौलत इसकी हमेशा रहेगी और लोग इसका नाम, यानी असल में इसमें यादगारें कायम करने वाली बात भी है, पिरामिड्स की तरह अहराम मिसर, कि ये सब कुछ बना दो ताकि तुम्हारे नाम बाकी रहे। कहानी कल्ला लयुम बजन नफिल खुतमा, हरगिस नहीं, वो तो यकीनन झोंक दिया जाएगा खुतमा में। खुतमा ख़तमा से तोड़ देने वाली, पीस डालने वाली, ग्राइंडर लिख लीजिए, ग्राइंडिंग मशीन आपकी, चूर चूर और रेजा रेजा कर देने वाली। दोजख के ख़ास तबके का नाम है जिसकी आग इतनी तेज़ होगी कि इसमें जो चीज़ भी डाली जाएगी वो उसको चूरा चूरा कर देगी, जैसे आपका ब्लेंडर या ग्राइंडर चीज़ों को चूरा चूरा कर देता है, एक जिस्त में उसको पीस के रख देगी। और वमा दरा कमल खुतमह, और तुम क्या जानो वो खुतमह क्या है। नारुल्लाहिल मुकदा, वो आग है अल्लाह की बढ़ाई भड़काई हुई। नोट करें, कुरान का वाहिद मुकाम है, दिस इज़ द ओनली पॉइंट इन कुरान के आग यानी दोजख को अल्लाह ने अपना कहा है, नारुल्लाह। यानी अगर दुनिया अल्लाह की और इतनी परफेक्ट है तो सोचिए फिर नार जो अल्लाह की लगी है वो कितनी परफेक्ट होगी, क्योंकि उसका तो हर काम परफेक्ट है। और मुकदा वकूदुन नास वल हिजारा में पढ़ चुके, अल्लती तत्तली वलल अफईदह, जो दिलों के ऊपर जा चढ़ेगी, यानी साग की हिद्दत और तपश इंसान की जिल्द से ज़्यादा इसके दिल पर असरअंदाज होगी। आजकल आप देखिए कि खुद हम अल्ट्रा वायलट रेज और इंफ्रा रेड रेज और माइक्रोवेव में जो भी रेज है उसको देखते हैं, क्या मुश्किल है। बस कहते हैं खुतम एटमी हरारत की कोई शक्ल है, कोई न्यूक्लियर इसको एनर्जी कहते हैं, जो भी हुई हम उसका इदराक नहीं कर सकते। हाँ लेकिन ये बता दी, नहा अलैहिम मुसदा, बेशक वो आग इन पर बंद कर दी जाएगी ताकि इसकी सारी हीट अंदर रहे। आप भी यही करते हैं ना, बार बार ओवन को खोलें तो हीट कम हो जाती है, प्रेशर जब अंदर जाता है कुकर में तो चीज़ गलती है ना, उनको बड़े बड़े ओवंस में डालकर ऊपर से उसको सील कर दिया जाएगा। सोचें ज़रा, हमें ज़िंदा किसी को पकड़ कर कोई ओवन में डाल दे। अल्लाह अकबर, फ़ी अमदम ममद्दह, फ़ी अमदम ममद्दह, बड़े ऊंचे ऊंचे लंबे सतूनों में। अमद अमूद से इमादुद्दीन हदीस में आता है नमाज के लिए, स्तून पिलर, और ममद्दह वही है जो मद है, लंबे लंबे टॉल स्तून, यानी उनके अंदर चैम्बर्स ऑफ फायर्स में उनको डालकर ऊपर से सील कर दिया जाएगा। क्या पता चला कि बद इखलाक शख्स का यही अंजाम होता है। किस तरीके से अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स की बात की है, और यहाँ अखलाकी बुराइयों की बात है। याद रखिए कि किसी माशरे में जब दौलत आम हो जाती है ना, तो अमूमन इस तरह की अखलाकी बुराइयाँ आम हो जाती हैं। किसी से मेरी बात हो रही थी, वो इस सोसाइटी के इन लीड्स के बच्चों को टीच करती हैं स्कूल में, तो जब मैंने ये सुना कि वो टीचर हैं तो मेरा बहुत बड़ा पैशन है ये, और मैं ख़ास तौर पे उन लोगों से बहुत बात पूछती हूँ जो पब्लिक स्कूलों में और रेगुलर स्कूलों में पढ़ाते हैं कि आप सुनाइए वहाँ के क्या हालात हैं. बिलीव मी, जो मुझे उन्होंने बताया थोड़ा बहुत, मुझे तो आप लोगों की और कदर आ गई. मैंने कहा मेरे स्टूडेंट्स ऐसा हों. वो कहती पूरे पीरियड के दौरान मैं उनको कुछ नहीं पढ़ा सकती, सिर्फ मैं उनकी बदतमीज़ियों को देख रही होती हूँ. है भी अभी नया नया तजुर्बा, और इंतहा से ज़्यादा बदतमीज़ और फिल्थी और डर्टी बच्चे, क्योंकि बड़े घरों से आए हैं. टीचर को तो वो टीचर नहीं, वो तो मेरे अलमासी भी नहीं समझते होंगे. कितना बड़ा चैलेंज ऐसी नस्लों को पढ़ाने का, और ऐसी नस्लें कल पढ़ेंगी क्या और करेंगी क्या. यानी वही मुझे वाकई समझ आया कि जो इकरा बिस्मि रब्बी का में हम पढ़ रहे थे कि दुनिया की तालीम के अरूज पे भी पहुंच के इंसान जाहिल है. सफाकियत और दीन का इल्म एक साल में बंदे का दिल बदलता है. कितना बंदा मुअद्दब होता है, दिल करता है हाथों के ऊपर उस्ताद के पाँव. बिलीव मी, इससे भी ज़्यादा दिल में कदर और मंजिलत आती है अपने उस्तादों के लिए मेरे दिल में. क्यों? कि उन्होंने हमें जो बता दिया, सिखा दिया, अल्लाह ने चला दिया ना. तो याद रखिए कि आज दौलत के नशे ने नस्लों को सरकश कर दिया. वो उस्तादों से ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई मुलाजमों से ट्रीट करता है. तो इस सूरत में आपको यहाँ समझ आएगी. अगर पीछे से सारी सूरतों को जमा करें ना यहाँ तक, तो आपको समझ आएगा कि सूरत जिलजाल से लेके यहाँ तक जितनी भी सूरतें आई हैं ना, इसमें आपको मक्का के उस माहौल की एक झलक ज़रूर दिखेगी. शिर्क है अकीदे में, ठीक है, अकायद ख़राब, और आखरत का तो बिल्कुल नज़रिया चौपट, और बद अखलाक कितने हैं कि मुंह पे गालियां देते और ऐसी बातें करते हैं. मुझे बताइए ऐसे लोगों में जाकर अल्लाह के नबी का दीन का काम करना, ये कितना बड़ा महाज था. ताइफ के सफ़र में क्यों आपके पीछे ओबाशों को लगा दिया? इसलिए कि वो यूज़ टू थे. तो अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें बदल दे. इंशाल्लाह ये दोनों सूरतों का एंड खुलासा कल करके, यानी इस पर थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे अगले इस बार सूरत के साथ. अभी आप कोई बात पूछना करना चाहें तो कर लें. चले, यहाँ काफ़ी है. आप लोग छोटा सा ब्रेक लें, क्योंकि इसके बाद आप लोगों की तजवी टीचर आने वाली हैं, तो उनकी क्लास होगी. अल्लाह ताला हमारे दिल बदल दे. आप लोग कुछ नुक्ते ढूंढ के लाइए, सोचिएगा इसके बारे में. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन. आमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.